मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय मानो मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। बोलो बोलो बोलो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। बोलो बोलो।
जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
इसको पावर दो, पावर पावर दो।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, नंद नंदन मुकुंद मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन।
जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधे श्याम श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की गिरी गोवर्धन धारी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने के पहले गोवर्धन का इतिहास आपको बताना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आप सब लोग सतर्क रहेंगे और वक्ता को सतर्क रह के उत्साह देंगे। हर वक्ता के लिए दोपहर का समय बहुत कठिन होता है और हर श्रोता के लिए दोपहर का समय बहुत आसान होता है, तो इस आसानी को हम आपकी नष्ट करना चाहते हैं और हमारे कष्ट को भी दूर करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो गोवर्धन की कथा ऐसी है कि गोलोक वृंदावन में जब भगवान ने गोलोक वृंदावन का निर्माण किया, गोलोक वृंदावन में बाएं अंग से राधा रानी का निर्माण हुआ और दाहिने अंग से ग्वाल बालों का निर्माण हुआ। राधा रानी निर्माण होने के बाद राधा रानी ने अपने शरीर से सब गोपियों का निर्माण किया और गोपियों के साथ कृष्ण भगवान ने रास रचाया कौलोक वृंदावन में। अब जो रास रचाया तो उस समय गोपियों के और कृष्ण के दिव्य शरीर से दिव्य स्वेद जल निर्माण हुआ। उस दिव्य सुगंधित स्वेद जल से एक बड़ा तालाब तैयार हो गया और उस तालाब का दर्शन करने के लिए राधा और कृष्ण गए गोपियों के साथ। तब राधा रानी का ऐसा मन हुआ, कितना सुंदर और कितना आकर्षक ये तालाब है, सरोवर है, कुंड है, इसको नदी का स्वरूप देना चाहिए। उसी समय राधा रानी की इच्छा से वो जो सरोवर था वो प्रवाहित हो गया और उसका रूपांतर जमुना नदी में हुआ। इस प्रकार से जमुना नदी का आविर्भाव श्री वृंदावन गोलोक वृंदावन में हुआ। उसके बाद में राधा रानी कृष्ण को मिलती है और कहती है कि मुझे आपके साथ में ऐसा स्थान चाहिए जिसमें मैं आपके साथ में एकांत लीला कर सकती हूँ। तो उसी समय जब राधा रानी ने इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके साथ में उत्कट लीला करने के लिए एकांत स्थान चाहिए, उस समय कृष्ण के वक्षस्थल से एक नील तेज निर्माण हुआ और वो नील तेज सबके आंखों के सामने जाकर गोवर्धन गोलोक वृंदावन की भूमि पर स्थित हो गया और उसका विकास होने लगा। हाँ, सबके आंखों के सामने उसकी ऐसा विकास हुआ कि वो तेजी से बढ़ने लगा और वही हुआ गोवर्धन पर्वत। इतना हजारों करोड़ों योजन वो आकाश में चला गया कि बाद में रोकना पड़ा कृष्ण को, से इतनी उसकी अविरत गति थी। इस प्रकार से सुंदर जड़ी बूटी, वृक्षवल्लरी, हरियाली, कुंड, झरने और सभी प्रकार के जीवनावश्यक वस्तुओं से संपन्न, ऐसे ऐश्वर्य संपन्न श्री गिरिराज गोवर्धन का गोलोक वृंदावन में जन्म हुआ। यथावकाश बाकी वैकुंठों की निर्मिति हुई, ब्रह्मज्योति का निर्माण हुआ, ब्रजा नदी का निर्माण हुआ, महाविष्णु का निर्माण हुआ, भौतिक जगत का निर्माण हुआ। उस समय आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जब आतंक मचता है तो पृथ्वी देवी भूमि का गाय का रूप धारण लेकर क्षीर उदकशाही विष्णु के पास जाती है और क्षीर उदकशाही विष्णु उनको लेकर जाते हैं गोलोक वृंदावन और गोलोक वृंदावन में शिर उदक साई विष्णु उनमें विलीन हो जाते हैं। फिर वहां पर भगवान के कई अवतार प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, वो गोलोकेश्वर श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। फिर प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी वानर सेना के साथ प्रकट हो जाते हैं और वो श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। फिर नर नारायण ऋषि यज्ञ पुरुष ऐसे जितने वामन देव नरसिंह भगवान जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब प्रकट होते हैं और भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं। फिर भगवान पृथ्वी जो गाय बनकर आई है उनको सांत्वना देते हैं कि निश्चिंत रहो, हम जरूर आएंगे, अवतार लेंगे और आपके ऊपर जिन्होंने आतंक फैला रखा है उन राक्षसों का वध करेंगे, संतों को सुख देंगे। तो इस समय राधा रानी भी साथ में थी और जब भगवान ने ये घोषणा कर दी कि हम जाएंगे तो राधा रानी बेहोश हो गई। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि क्या कारण है बेहोश होने का। तो राधा रानी को होश में लाया गया और पूछा गया कि क्या हुआ। तो राधा रानी ने कहा कि आपने ही तो कहा ना कि आप जाने वाले हो, इसलिए हमें दुख हुआ और बेहोश हो गए। तो कृष्ण कहते हैं कि किसने कहा कि मैं आपके बिना जाऊंगा, आपको साथ में लेकर जाऊंगा। तो उस समय राधा रानी कृष्ण भगवान राधा रानी कृष्ण को कहती है कि आप चाहते हुए भी आपके संग में नहीं आऊंगी मैं, क्योंकि जहां वृंदावन नहीं है, बैग को निकाल दो, जहां वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना जी नहीं है और जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है वहां पर मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी, जाना नहीं चाहती, ये राधा रानी का प्रण है। हाँ, तो कृष्ण ने कहा कि आपके इस मंतव्य को पहले से ही जानते हुए मैंने गोलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा, पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन जो है वो पृथ्वी पर भेज दिया है ताकि आपको कोई संकोच ना हो, कोई दुख ना हो। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा से गोलोक वृंदावन छोड़कर श्री गिरिराज जी बड़ी लंबी यात्रा करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है उसका, कैसे वो गोलोक से निकलते हैं, लेकिन साथ साथ में जब निकलते हैं गोलोक से तो गोलोक में भी रहते हैं और नीचे भी आते हैं। हाँ, अचिंत वेदाभि तत्व है ये। और एक श्लोक है ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूर्ण में से कोई पूर्ण निकल जाता है फिर भी वो पूर्ण अपूर्ण नहीं होता है और जो निकलता पूर्ण है वो भी पूर्ण रहता है। तो गोलोक से निकलते हैं, गोलोक में भी रहते हैं और गोलोक से आते हैं पृथ्वी पर। लौकिक दृष्टि से द्रोणगिरी पर्वत, जो भी पर्वत के रूप में भगवान के भक्त हैं, तो द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में गोवर्धन का जन्म होता है। यमुना देवी भी ऐसी यात्रा करते हुए कहते हैं कि 1,00,000 पहिए वाले स्वर्ण रथ में, जिसमें लाखों करोड़ों घंटियां लगी हुई, सोने की घंटियां, ऐसा घंटा नाद करते हुए अपने करोड़ों सखियों के साथ यात्रा करते हुए गौलोक, फिर वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, गिरिजा नदी, फिर करण सागर, फिर ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, वहां से स्वर्गलोक ब्रह्मालोक प्रवेश करती है, ब्रह्मालोक से स्वर्गलोक प्रवेश करती है, वहां से पृथ्वी पर आती है कालिंद पर्वत पर और कालिंद पर्वत से प्रवाहित होती है, दृश्यमान होती है, इसलिए उसका नाम कालिंदी भी है, कालिंदी पर्वत से आकर निकलने के लिए। और वैसे लौकिक दृष्टि से सूर्य की पुत्री के रूप में इनका जन्म होता है। सूर्य की पुत्री का, सूर्य को पहले पुत्री होती है ताप्ती, जो हमारे गुजरात में तापी नदी के रूप में प्रस्तुत है, सबसे पहली कन्या है, ज्येष्ठ कन्या सूर्य भगवान की, उनकी पत्नी का नाम उषा भी है, छाया भी है। तो उसके बाद में सूर्यदेव को एक पुत्र होता है। अब सूर्यदेव का तेज इतना रहता है कि उसकी पत्नी उसको झेल नहीं सकती है, तो बड़ी ऐसे डर जाती है उसको तेज को देखकर। तो सूर्यदेव कहते हैं कि आपने डर कर हमारे साथ संबंध किया, इसलिए जो पुत्र हुआ है पूरा संसार उससे डरेगा, उसका नाम है यमराज। तो पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि अरे हमारे पुत्र को देख के दुनिया को डर भी लगना चाहिए। तो अगली बार थोड़ा सा संभल के अपने आप को, उनका संबंध हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार पुत्री होगी आपको और वो नदी रूप में होगी और इसके जल में जो स्नान करेगा वो बड़े भैया के भय से मुक्त हो जाएगा, उसका नाम है यमुना, यम और यमी,
और उसके बाद में उनको चौथे संतान के रूप में शनिदेव का प्राप्ति हुआ है, शनिदेव भी उनके पुत्र है। और शनिदेव को मैं एक बात बता दूं आपको, छोटी सी बात, सब लोग शनि से डरते हैं, कोई शनि के रास्ते में आना नहीं चाहता। लेकिन आपको बता दूं, हाँ, पुराणों में लिखा है शनिदेव भगवान के परम परम शुद्ध भक्त हैं। जैसे होता है ना, देखो पुलिस से डरता कौन है बताओ, चोर, आम आदमी डरता है क्या पुलिस को? हम पुलिस को भी नहीं डरे, हरे कृष्णा भाई साहब हरे कृष्णा बोल के चले जाएंगे। तो आम आदमी जो नियमों का पालन करता है, मर्यादा से रहता है, शहर में रहता है, उसको पुलिस की कोई भय की जरूरत नहीं, पुलिस से डरता केवल चोर है। तो शनि देव से जो पापी व्यक्ति वही डरता है, क्योंकि पता है इतने सारे पाप किए तो उसका फल देने के लिए बैठे महाराज जी हमारे। तो शनिदेव का वर्णन है कि भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं और जन्म से इतने विरक्त थे वो कि उनको संसार में कोई रुचि नहीं थी। तो ऐसे परम भक्त परम वैष्णव शनिदेव महाराज को कृष्ण भगवान ने कोकिला वन में आश्रय दिया है, वहां पर रहते हुए उनका दर्शन बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना वक्र दृष्टि वगैरह वगैरह, वो सब भौतिकतावादी लोगों के लिए, जो तो भगवान के भक्त है ना वो यमराज से भी डरते नहीं है ना शनिदेव से डरते हैं। वो तो सब को मतलब क्या, जैसे गुरु भाई होते ना ऐसे, तो वैष्णव है ना, हम बंबी वैष्णव होने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी वैष्णव है तो उनसे प्रेम होता है। जैसे पुलिस का लड़का होगा, जो पुलिस कमिश्नर का लड़का होगा, डरता है क्या उससे? वो तो कंधे पे चढ़ेगा उसके, टपली मारेगा उसको, क्योंकि प्रेम है उनका, उनका कोई चोर पुलिस का रिश्ता नहीं है। उसी प्रकार से जब हम वैष्णव परिवार में आते हैं ना, तो यमराज शनिदेव राहु केतु इनसे सब भय नष्ट हो जाता है। तो भगवान के सारे जो रहते हैं उनको राहु शनि और केतु से क्या डर है, जाके राके साइया मार सके ना कोई, है ना। तो मैं कह रहा था कि जब ये गिरिराज गोवर्धन अवतरित हुए पृथ्वी पर, तो एक मुनि थे पुलत्स्य मुनि। वो पुलत्स्य मुनि ना बड़े बड़े सिद्ध पुरुष थे, एक साथ में 9 रूप धारण कर सकते थे और इतने प्रभावी थे, इतने शक्तिशाली थे, सिद्ध बल थे कि पर्वतों को गेंद की तरह उठाते थे। लेकिन काशी में पर्वत नहीं था, ये काशी के थे, आज भी काशी में पर्वत नहीं, बनारस में 9 पर्वत। तो ये घूमते घामते हिमालय चले गए और देख रहे थे कौन सा पर्वत ले लूं। जैसे हम जाते हैं ना मॉल में, साड़ी कौन सी ले लूं, कौन सा गेंद ले लूं, तो हमको लगता है कि अरे गेंद कौन उठाएगा, साड़ी कौन उठाएगा, ऐसा लगता है क्या? ठीक है, तो वैसे ये पर्वत चुनने के लिए गए थे उधर। तो इनको ये पर्वत अच्छा लगा बहुत, गोवर्धन इतना जड़ी बूटी से भरा हुआ, चमचमाता हुआ, रत्न माणिक गुफाएं कंदर गिरी कंदर गुफाएं सब भरा हुआ, बैठने की जगह घूमने की जगह हरियाली और सरोवर, क्या कहें आपको, हर प्रकार से सुसज्ज था वो जीवन के लिए, मतलब ऐशो आराम के लिए नहीं, एक साधु के लिए बहुत पर्याप्त था, एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए बहुत पर्याप्त। तो उनके पिता से मिले द्रोणगिरी से और बोले कि हमको आपका पुत्र चाहिए। तो बोले पिता तो बेहोश से हो गए, इतना प्रेम था गिरि गोवर्धन पर, लेकिन साधु की इच्छा को टाल नहीं सकते ना, साधु की इच्छा से एकदम डरते हैं कि शाप मिलेगा शाप। तो गिरि गोवर्धन तो पहले भगवान की भक्ति है, वो तो वेट ही कर रहे थे कौन सा बहाना मिलेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो उस समय संभलते हैं अपने आप को, हाँ कहते हैं, फिर गिरि गोवर्धन तुरंत पीछे खड़े हो जाते हैं पुलत्स्य मुनि के, और पुलत्स्य मुनि को बताते हैं कि हमारी एक शर्त है, हमारी जिसके वजह से हम आपके साथ आएंगे, आप उसको पूरी करेंगे तो हम चलेंगे। तो क्या शर्त है? तो कहते हैं कि आप ले चलेंगे ना हमको, उठा के ले चलना आपको, और कहीं नीचे रखेंगे ना वही हम बैठ जाएंगे, फिर आपके साथ में आगे नहीं चलेंगे। वो कहता है क्या बात है, उसके तो गेंद की तरह कमल की तरह फूल की तरह है वो, आप सिद्ध बल भक्ति के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो चलते हैं फिर। हाँ, आगे चल रहे थे हिमालय से काशी की ओर, तो उसके बीच में ना ब्रज आता है वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम कैसा है, वो काल के साथ में नष्ट नहीं होता है, जैसे कि प्रलय हो गया, मिनी प्रलय हो गया, महाप्रलय हो गया, पूरा लोक ही नष्ट हो गया, फिर भी वृंदावन धाम वैसे रहता है, वो चिरंतन धाम है। तो वृंदावन धाम तो आगे भगवान वहां पर अवतार लेने वाले हैं, अभी तो अवतार कोई कार्य नहीं उनका। तो जब भी वो वृंदावन धाम आता है तो गिरिराज का भक्ति भाव जो है ना, वो मराठी से ना उत्तम बड़ू, उत्तम बड़ू मतलब ऐसा भाव विभोर हो गया गिरिराज जी महाराज अरे मेरा धाम आ गया है, भगवान का मेरा धाम आ गया, मुझे यही रहना है। तो उनके भक्ति के वेग से पुलत से मुनि को लघुशंका का वेग आया जोर सार, और लघुशंका का वेग आने से उनको कुछ रहा ही नहीं गया, मतलब विचार करने लायक रह नहीं गए वो, तो झट से उन्होंने गोवर्धन को नीचे रखा और झट से लघुशंका करने गए, और लघुशंका से निवृत्त होकर आए, शुचिर्भूत होकर आए, और फिर तभी तो शांत हो गए थे। उठाने का प्रयास किया तो हमारे गिरिराज जी उठ ही नहीं रहे, तो अरे उठो, अरे उठो, अरे महाराज जी हमने तो कहा था ना आपको, आपने अगर हमको कहीं रख दिया तो हम नहीं उठने वाले, मैंने ऐसे कैसे, हमको लघुशंका आ गई। तो देखो शर्त तो शर्त ही होती है, बात तो बात ही होती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वैसे तो, बहुत मनाया उनको लेकिन माने नहीं, क्योंकि वो तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए थे, उनको क्या जरूरत है आगे जाने की। तो वो इतने सिद्ध बल साधु जो सहजता से गोवर्धन को उठाकर, अरे करोड़ों योजन थे आकाश में, वो उस समय आकाश में करोड़ों योजन लंबे थे, वो उसको उठाकर लाए थे अकेले। हाँ ममय वांछो जीव लोके, ये अनुमात्र जीव जो पुलस्त्य मुनि के रूप में था, वो इतने बड़े पर्वत को उठा के लाया था। लोग सोचते हैं अरे भगवान ने गिरिराज को कैसे उठाया, वो तो बड़ा पर्वत था, वो एक जीव ने उठाया था। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि कोई भी योग बल, ज्ञान बल, सिद्धि बल, भक्ति बल के सामने तुच्छ है। हाँ गोवर्धन के सामने वो टिक नहीं पाया और हारना पड़ा पुलस्त्य मुनि को, हाथ हिलाकर जाना पड़ा उनको, लेकिन जाते जाते शाप देके गए वो, तुमने हमारी बात नहीं मानी, और हमारी बात न मानने की वजह से हमको शाप देते हैं कि रोज एक तिल के दाने की तरह आप जमीन में धस जाओगे। और तब से उन्हें कहा मंजूर है, आप जो चाहे वो शाप दे सकते हो, हमारे भगवान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा भजन होना चाहिए भगवान के लिए, कोई भी शाप मिले, कोई भी कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे हो कहते ना कि तुम्हारे लिए कुछ भी, ऐसे भगवान के लिए कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। इस तरह से तब से, जब से लेकर पुलस्त्य मुनि ने सत्ययुग में उनको रखा था, तब से वो तिल तिल से जमीन पर धस रहे हैं। वो पूरा 17,28,000 साल का सत्ययुग बीता, फिर 12,96,000 साल का त्रेता युग बीता, और फिर द्वापर युग शुरू हुआ, वो भी था 8,64,000 का साल का, उसके भी लास्ट के कुछ 100-200 साल बचे, तब तक कितना ढस गया होगा वो, कितना छोटा हो गया होगा, और तब उसको कृष्ण भगवान ने उठाया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिन्होंने सारे पृथ्वी गोल, ग्रह गोल, अवकाश में तैरा के रखे हुए, उनको उस एक गोल के ऊपर का एक पर्वत हाथ में उंगली पे तैराने में क्या मुश्किल है, उठाने में भी क्या मुश्किल है। उनके जो अवतार है ना विस्तार बलराम जी महाराज, वो अपने फन पे केवल गोलोक नहीं, सारे लोगों को अपने सर पे धारण करते हुए, उसके बीच में गोलोक को धारण करते हैं, उसमें भी गोवर्धन है वहां का, वो तो उनके विस्तार है, वो तो कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण के पहले विस्तार है। तो ये सब श्रद्धा की बातें हैं, श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब कहानी हमारी झूठ है, श्रद्धा नहीं तो सब बच्चों की कहानी, श्रद्धा है तो वास्तव है, दिव्य वास्तव है। तो इस तरह से गोवर्धन महाराज वहां वेट करते रहे। फिर त्रेता में क्या हुआ, त्रेता में प्रभु रामचंद्र आए, वही ठाकुर जी महाराज हमारे राम के रूप में आए, और सीता का हरण हुआ, फिर उनको लंका में ले गए रावण, और वहां पर अशोक वाटिका में रखा, फिर वो हनुमान ने ढूंढ के निकाला उनको, और फिर ये बात बन गई कि अभी हमको सेतु बनाना है रामेश्वर से श्रीलंका तक, तो सेतु बनाने का काम आरंभ हुआ, सब लोग ने राम नाम लिखा पत्थर पर, और पत्थर तैर कर बड़ा ब्रिज बना उसका। हाँ प्रभु ऐसा क्यों करते, एक चुटकी बजाते तो पूरा ब्रिज बन जाता, इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, बंदर लोग पसीना बहा रहे हैं, खुद भी पसीना बहा रहे हैं। अरे ऐसा लीला नहीं करेंगे तो भक्तों को सेवा कैसे मिलेगी, सब कुछ मन से करेंगे तो भक्त लोग क्या करेंगे फिर भक्त लोग को सेवा चाहिए ना, और हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, भगवान ने चुटकी बजाया ब्रिज तैयार हो गया उससे क्या है, आनंद क्या आएगा। इस तरह से भगवान ने बड़े अपने भक्तों को सेवा देकर बड़ा सुंदर ब्रिज बनाया, और उसका भी टाइम था बहुत, सीता जी ने उधर दिया था मैंडेट कि इसके पहले आप नहीं आएंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो वहाँ पर टाइम का भी लिमिट, ऐसा नहीं कि भाई अच्छी तरह से 5-स्टार ब्रिज बनाएंगे, उसको लाइट लगाएंगे, रंग लगाएंगे, सब कुछ बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर जल्दी थी उनको बहुत, तो जल्दी जल्दी में उनको ना हनुमान जी को भेजा था कि जाओ पर्वत उठा के लेके आओ, छोटे मोटे पत्थर से काम बनने वाला नहीं है, इधर टाइम बहुत कम है। तो हनुमान जी कैसे हिमालय में जाकर पहाड़ को उठाकर लेके आ रहे थे, कितना स्पीड रहेगा उनका। रामेश्वर कहाँ, हिमालय किधर, वहां से उठाना, उठाकर नीचे लेके आना, फिर जाना, फिर उठाना, फिर इधर, फिर सह्याद्री, वही विंध्याचल। अरे बाप रे, तो आखिर में क्या हो गया ना, 7 कोस की जगह बच गई। अभी उनको टाइम नहीं था कि भाई 7 कोस के लिए एक एक कोस का पत्थर लेके आए। तो हनुमान जी आकाश में मंडरा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि एक ही पर्वत मिल जाए ना 7 कोस का तो फिट कर दूंगा उधर, एक ही बात, बार बार आने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी उड़ रहे थे, उनको ये पर्वत दिखाई पड़ा ब्रज में, तो नीचे उतरे, भाई बढ़िया है, इसे एक एक उठा लेते हैं। तभी वो जल्दी भी थे ना, अभी उनको कोई ऐसा वैष्णव एटिकेट वंशा कल्प तरह व्यस्त करने को टाइम थोड़ी था, तो ऐसा ही सदा उठाने को कोशिश किया। तो उठा नहीं उनसे, हनुमान जी कितने बलवान है, हनुमान जी से भी नहीं उठा। तो उनको समझ में आया कोई बड़ी विभूति है ये, तो पहले दंडवत प्रणाम किया। अभी क्या है, संकट काले सब कुछ करना पड़ता है। वो दंडवत प्रणाम किया, पूछा महाराज जी आप कौन है। तो उसके पहले, पूछने के पहले बता दो क्या हुआ, उठा नहीं उनसे, एक हाथ से, दो हाथ से पूरा बल लगाया, फिर भी नहीं उठा। फिर उन्हें क्या किया, देखते मेरा विस्तार कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो एक दिशा में उड़ने लगे, तो गिरिराज जी वहां से बढ़ने लगे, तो इनको एंड ही नहीं मिला उसका। तो दूसरी दिशा में देखने लगे यहाँ का विस्तार कहाँ है, तो वहां से गिरिराज जी बढ़ने लगे, तो वहां पर भी एंड नहीं मिला। तो समझ गए ये तो बड़ी विभूति है। तो दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज जी आप कौन हो। बोले आप बिना पूछे मुझे उठाने का प्रयास कर रहे, काम बताते नहीं, कुछ नहीं, पहचान नहीं बताते, मेरी पहचान नहीं पूछते, सीधा उठाने लगे, ऐसा कोई एटिकेट होता है क्या। बोले क्यों उठा रहे हो मुझे। तो फिर वो कहते हैं मैं हनुमान जी हूँ, प्रभु राम का सेवक हूँ, ऐसे ऐसे हुआ है, हमको ब्रिज बनाना है और आपका साइज बिल्कुल फिट होता है वहां पर। अरे पहले क्यों नहीं बताया, तो एकदम रुई की तरह हल्के हो गए वो, और हनुमान जी ने उनको उठाया। हाँ देखिए भगवान की सेवा का समय आता है ना, तो भक्त भी कैसे सहज बन जाते हैं, नेचुरल बन जाते हैं। हनुमान जी भी दंग रह गए, अरे इसको मैं इतना बलपूर्वक उठा नहीं पाया, तो एकदम फूल की तरह हल्के हो गए, आकाश में उठा के ले गए, और आकाश में उड़ ही रहे थे तो उधर से देवताओं ने देववाणी आकाशवाणी की कि वो ब्रिज पूरा हो गया है, सेतु बंध का काम पूरा हो गया है, अभी किसी को लेके मत आना, और जो जो आएंगे उनको बाद में सेवा देंगे। अभी कैसा है ना, वो जितने पर्वत वहां लगे ना, वो भाग्यवान थे, प्रभु प्रभु के चरणों का स्पर्श मिला उनको, प्रभु के चरणों का आश्रय मिला। तो उस समय एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि प्रभु गिरिराज को एक चॉइस देते हैं, देखो आपके पास दो पर्याय हैं, या तो आप यहाँ पर ब्रिज में आ जाओ, राम सेतु में हम एक ही बार चलेंगे उसके ऊपर, पर बाद में जब वापस आएंगे तो इस पे ब्रिज पे नहीं छोड़े आएंगे, ब्रिज छोड़ देंगे और हवाई मार्ग से जाएंगे, और या तो अगले युग में आपको मैं मौका देता हूँ कि आप वहीं रहो, मैं अगले युग में आपके आपके ऊपर 150 साल तक लीला करूंगा। तो चॉइस नंबर टू अच्छा है। या तो हमको अधिक सानिध्य चाहिए ना, एक बार चरण स्पर्श मिलेगा तो क्या है, बाकी तड़पते रहेंगे उनके लिए। एक कहानी ये लिखी है, और दूसरी कहानी लिखी है कि हनुमान जी ने तुरंत उनको जमीन पर रख दिया, और हमारा हनुमान जी पर बड़े गुस्सा हो गए कि हमको तुमने उठाया और अभी हम मना कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको वादा करते हैं भगवान आएंगे आपको लीला करेंगे। और बहुत रोए, इतना रोए कि हनुमान जी भी दंग रह गए, अरे ऐसा कोई भक्त होता है कि जरा सी सेवा छूटने पर इतना इतना दुख हो रहा है। जाके प्रभु को सब समझाया कि कैसे भक्त थे वो, तो प्रभु ने कहा मेरे भक्त है वो, बड़े विचित्र भक्त है मेरे, वो बड़े सर्रे भक्त हैं, उनको जाके कहना कि अगले अवतार में मैं आऊंगा ना, तो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे अंदर मेरे अंतरंग से अंतरंग लीला करूंगा, निश्चिंत रहो, सांत्वना जाके। हनुमान जी ने बाद में आके सांत्वना दिया उनको, डोंट वरी कृष्णा विल कम। तो इस प्रकार से त्रेता युग की लीला हो गई है, फिर भी वेट कर रहे हैं। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि भगवान की सेवा मिलने के लिए आतुर तो होना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, बेकाबू नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा जब तक मिलेगी तब तक संयम रखना चाहिए, और जब सेवा मिलेगी तो दिल से काम करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण फिर वृंदावन आए, गोकुल में थे, वृंदावन आए। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो वृंदावन कहते हैं ना, वो आज का जो भौगोलिक वृंदावन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पौराणिक वृंदावन है उसके अंदर नंदगांव, गोवर्धन, यमुना, बरसाना, जावट सब कुछ सम्मिलित है। तो हम बरसानंद भी वृंदावन में ही है, नंदगांव में वृंदावन में ही है, वो तो पौराणिक वृंदावन है, ऑल इंक्लूसिव। आज का जो वृंदावन है वो भौगोलिक वृंदावन है, वो मथुरा से 11 किलोमीटर है और वहाँ से नंदगांव 50 किलोमीटर है और वहाँ से बरसाना 45 किलोमीटर है, ऐसा ये भौगोलिक आज का अंडरस्टैंडिंग है। एनीवेज इसके एक सुंदर महात्म्य की कहानी भी है, पौराणिक कहानी है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम विजय था। तो वो ना एक बार गोवर्धन पर्वत के आसपास गया और उसने एक ऐसी शिला उठा ली वहां से चलते चलते ऐसे ही मजाक में। लेकिन हम लोगों को वहां की शिला उठाना नहीं चाहिए। हाँ, गिरिराज जी का नियम है, गिरिराज जी का शिला जो है स्वयं कृष्ण है, गिरिराज स्वयं भी कृष्ण है, एक एक शिला भी कृष्ण है। तो गिरिराज जी में जाकर आप अभी हम परिक्रमा जाएंगे ना, कोई तो पत्थर नहीं उठाना, कोई तो शिला नहीं उठाना, कंकड़ भी नहीं उठाना वहां पर, यहाँ तक कि रज भी नहीं उठाते क्योंकि रज में भी कंकड़ बारीक बारीक होते हैं। तो वहां के रज के कंकड़ को ब्रज के बाहर ले जाना बहुत बड़ा अपराध है, तो बाद में आपको बताएंगे, मुझे याद करना उसके लिए। तो ये उन्होंने कंकड़ उठाया और चलने लगे, चलते चलते आज सामने एक भयंकर राक्षस आया, बहुत भयंकर, अकराल विकराल दांत थे उसके और भयंकर राक्षस था वो। तो भी वो डर गया, तो उसके हाथ में पत्थर था, वो शिला थी गिरिराज की, उसको दे मारा उसने। जैसे ही वो शिला का स्पर्श राक्षस को हुआ, वो तुरंत देव रूपांतर हो गया, वो तुरंत देव बन गया, देवता बन गया। तो विजय ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। तो देव ब्राह्मण क्या, वो देव जो रूप में आ गया वो व्यक्ति, वो कहता है, ब्राह्मण देवता मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी कृपा से मेरा गिरिराज का संपर्क हुआ और इस संपर्क होते ही मैं दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। तो विजय ब्राह्मण को पता नहीं था कि क्या इसमें महिमा क्या है इतनी। तो विजय ब्राह्मण ही उनको पूछता है, क्या ये पत्थर की महिमा क्या है, ये पर्वत की महिमा क्या है। तो वो कहता है कि मैं एक पुराने जन्म में, मैं कई जन्मों के पहले की बात करता हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन उस ब्राह्मण जन्म में मैंने बहुत पाप किए, वेश्यागमन किया, पत्नी को भेज दिया घर से बाहर, माता पिता को मार दिया, उनका प्रॉपर्टी हड़प लिया मैंने, बहुत भोग लिया, वेश्या को भी बाद में मार दिया, और बहुत पाप किए, जघन्य पाप किए। उस जीवन के अंत में काले सांप के डसने की वजह से मेरी मृत्यु हो गई और वो मृत्यु होने के बाद में मैं बहुत लंबा वर्णन है, मैं कर नहीं सकता अभी, कितने जन्म लिए, 100 जन्म शेर के लिए, कितने जन्म सांप के लिए, कितने जन्म कीटक के लिए, कितने जन्म इसके लिए, कितने जन्म भूत प्रेत के रूप में रहा और आखिर में इतना सारा कष्ट। कहते हैं कि 84 लक्ष योनि में एक एक साल गुजारा मैंने, वो भी कष्टमय पापमय के पाप के फलों को भोगते हुए 84 लक्ष योनि में मैंने एक एक साल गुजारा, ये अलावा बाकी अलावा। फिर बाद में मैं ये विकराल राक्षस बना और आपने जब ये गिरी गोवर्धन का स्पर्श कराया तो मुझे ये दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और ये सब वार्तालाप होने के बाद में उसके ब्राह्मण के आंखों के सामने वैकुंठ से विमान आया और वो देवता अपने दिव्य शरीर में विमान में बैठकर वैकुंठ चला गया और वो खुद वहां पर उसने गोवर्धन की महिमा गाई है उस दिव्य स्वरूप प्राप्त करने के बाद वाले उस व्यक्ति ने, कि गिरी गोवर्धन साक्षात विष्णु है, पृथ्वी पर आकर सेवा में विराजमान है। तो ये गुरु गोवर्धन का महात्म्य बताया गया है, ये गर्ग संहिता में है, ब्रह्मवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, कई जगह पर इसका वर्णन आता है। एनीवेज तो ये गोवर्धन कई योजन लंबे थे आकाश में, कई योजन विस्तार में थे, कई योजन चौड़े भी थे और ये मोर के आकार में है और कैसे उल्टे सोए मोर, मोर कैसा रहता है, पैर नीचे रहता है ना, सर ऊपर रहता है, इनके पैर ऊपर है और वो उल्टे भाव में पड़े हुए हैं, आंखें आकाश की ओर, दो उनकी आंखें जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड है, आने और उनका क्या वक्षस्थल है और पूछरी उनकी पूछ है, कुसुम सरोवर उनका हृदय है, सुंदर वर्णन आता है उसका। तो ये इनका मेन जो लीला है वो हमारे दर्शन में कहीं नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले ही बताते हैं। जो आप जो फोटो आप देख रहे हैं ना, देखिए ये फोटो आप देख रहे हैं, 7 साल के कृष्ण भगवान जो है वो यहाँ पर पर्वत को उठाए खड़े, तो बड़ी लंबी लीला है, बहुत सारी सीखें हैं उसके अंदर, हम आपको संक्षिप्त बताते हैं। इंद्र भगवान का गर्व थोड़ा बढ़ गया था, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, लेकिन इंद्र का गर्व हरण करना चाहते हैं अपने भक्तों के अंदर, उनको गर्व अच्छा लगता नहीं। तो अपने भक्तों के अंदर जब गर्व का प्रवेश होता है तो भगवान लीला करके उस गर्व का खंडन करते हैं। तो अपने नंद महाराज इंद्र का पूजन करने जा रहे थे हर साल की तरह, तो कृष्ण कुतूहल से पूछते हैं क्या हो रहा है। तो नंद महाराज बताते हैं इंद्र का यज्ञ चल रहा है। क्यों चल रहा है? भले वो वर्षा देते हैं, वर्षा से धान उगता है, घास उगती है, हमारी गाय उसे चरती है, गाय का दूध निकलता है, दूध के पदार्थ बनते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर हमारा चरितार्थ चलता है। तो इंद्र की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान ने वहां कहा कि देखो, इंद्र का काम है जल देना, सूर्य का काम है प्रकाश देना और हीट देना, उष्णता देना। वैसे देवता अपना ड्यूटी है, वो आप उनका कुछ पूजन नहीं करेंगे तो भी उनको देना है। आप दे रहे अच्छा है, लेकिन नहीं देंगे तो उनको देना ही पड़ेगा, वो उनका ड्यूटी है, उनका भगवान ने लगाया और ड्यूटी है वो। फिर भी वो बोलते हैं बालक को क्या समझता है, बालक अपने बकबक कर रहा है तो ठीक है, नहीं बेटा पर नहीं नहीं आप ना वो इंद्र का पूजन बंद करो। देखो आप गोवर्धन की ओर देखो, गोवर्धन में हमारे गायों को घास मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, पानी मिलता है, झरने हैं, फल है, फूल है, क्या नहीं है? हमारे लिए जीवन आवश्यक सब वस्तुएं गोवर्धन के अंदर है। हमारा देवता तो गोवर्धन है, गिरिराज बाबा है, तो आप गिरिराज की पूजा करो। चलो कोई बात नहीं, गिरिराज की पूजा भी करते हैं, इंद्र की पूजा भी करते हैं, अलग से करेंगे। नहीं नहीं अलग अलग कुछ नहीं, साधन जमा किया ना उसी को यूज करो उधर। अभी क्या कहेंगे बालक को, देखो मान ही लेना है जिद को। बोले ये सारा साधन जो है ना, इसको इंद्र पूजा कैंसिल करके इसको ही लगा दो गोवर्धन की पूजन में। तो कृष्ण का जो प्रेम कृष्ण के ऊपर करते हैं ब्रजवासी ना, उनकी उनके वाक्य के बाहर नहीं जा सकते, तो फिर मानना पड़ता है। फिर सारा आयोजन जो है वो गोवर्धन की पूजा का होता है। भगवान विस्तार बताते हैं कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, पर्वत के समान व्यंजन बनाओ और हौद बनाओ जूस के और खीर के और इसके मालपुआ के और रसगुल्ला के और इसके उसके, पूरा वर्णन करते हैं। तो सब ब्रजवासी ना ऐसे घर जाते हैं, बोले कृष्ण ने कहा है अभी गिरिराज का पूजन होगा। तो जाके सज सज के आते हैं, पूरा पर्वत जैसे व्यंजन बनाते हैं। ऐसा कहा गया कि ब्रजवासियों ने उस दिन अपने घर पे एक भी कण अनाज रखा नहीं उनके गोडाउन के अंदर। हम कैसे अभी आज फिस्ट आपके घर पे, तो क्या पूरा साल भर का अनाज खत्म करेंगे उसके अंदर? नहीं, बहुत सारा बनाएंगे लेकिन बहुत सारा साल भर के लिए बचेगा ना, थोड़ी ऐसा होता है। उन्होंने अपना भंडार पूरा खाली कर दिया, यहाँ तक कि अगले खाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट के बाद लंच के लिए क्या है पता नहीं उनको, पूरा निछावर कर दिया उन्होंने। और वो हमारा महेश्वरी भवन है उधर गोवर्धन में, उसके सामने वो दान निवर्तन कुंड है, वो दिखाएंगे आपको। वहां से लेकर आन्योर गांव तक तो इतने व्यंजन लगाए थे पर्वत समान कि छोटी उंगली भी बीच में घुसने को जगह नहीं थी। इतने हौद बनाए थे, इतने रसों के, इतने व्यंजनों के, इतने खीर के, और सभी बोले अन्नकूट बनाना चाहिए, अन्न का कूट यानी पर्वत बनाना चाहिए। तो पर्वत के समान अन्न के पर्वत बनाए, अन्नकूट उत्सव बनाया। फिर कृष्ण भगवान आए सज धज के, सब ग्वाल बाल सज धज के आए, पूरा पगड़ी फेटा पहनकर आए, फूल वूल पहनकर, अलंकार पहनकर, इतना बड़ा उत्सव था ब्रज का। मेरे विचार से ना सबसे बड़ा आनंदमय उत्सव यही था, अन्नकूट पूजन, गोवर्धन की पूजा। बाकी सब में तो सनसनी खेज खेल था ना, विरासत आया मारा उसका, कभी एंग्जाइटी करी ये, लेकिन ये ऐसा उत्सव रहा ना कि सब लोग, हमने उसका ड्रामा भी किया था द्वारकाधीश प्रभु वो सब मिलकर, वो ड्रामा करने के लिए भी इतना आनंद आया था, इतना आनंद ही आनंद था, वो वेरी हैप्पी ड्रामा। तो ये पूजन हुआ, नहीं पूजन होने के पहले कृष्ण आए, बोले हम अभी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहली परिक्रमा कृष्ण के नेतृत्व में भगवान कृष्ण ने स्वयं सब ब्रजवासियों के साथ की। हाँ, कितनी पावन घड़ी है, देखो परिक्रमा पूरी कर दी, फिर कृष्ण ने भोग लगाया, सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया गोवर्धन पर्वत को, और तुरंत सबके सामने बालक कृष्ण जो थे वो गोवर्धन पर्वत बने। मतलब हमारे साथ भी बालक कृष्ण है और पर्वत के रूप में भी कृष्ण वहां पर हैं। सबको आश्चर्य लगा, रहे यही पर्वत है, यही भगवान है, अरे वाह क्या बात है। तो उन्होंने ना ऐसे अपने अनंत हाथ पैदा किए और सारे इतने व्यंजन थे गटाघट गटक दिए पूरे एक ही झटके में। उसमें ना एक छोटी सी कथा आती है, बोले हाथरस में एक गोपी थी, वो नहीं आ पाई, तो उसने हाथरस में अपने अन्नकूट बना के रखे थे। तो उन्होंने अम्बा एक हाथ लंबा फैला दिया, वहां से भी उठा लिया उसको और खा लिया। एक बदरोला थी, बदरोला गोपी, वो बरसाने के पास में उसका गांव है बदरोला, वो भी नहीं आ पाई बेचारी। तो उसने भी वहां पर पर्वत बनाए थे, तो हाथ पीछे किया, वो पीछे की तरफ है ना, पीछे किया और वहां से भी उठाए, उस गांव का नाम पड़ा बदरोला वो गोपी के ऊपर। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं और क्षण मात्र में सारे खा लिए, और खा लेने के बाद में अनियोर अनियोर बोलो
अनियोर।
अरे क्या भोजन किया कि नहीं दोपहर को आपने, बोलो अनियोर अनियोर। और दो और दो, हमको सोना नहीं है, और दो और दो। ऐसे तो अभी क्या करें, कुछ तो है नहीं बचा, व्यंजन भी नहीं है, इंग्रेडिएंट भी नहीं बचा, भंडार खाली हो गए और सारा घटक गए, तो क्या करें अभी। तो हमने तुलसी पत्र रखा तो भगवान संतुष्ट हो गए। और आश्चर्य की बात देखो, अहो आश्चर्यम, सारे अन्नकूट वहां प्रकट हो गए, सारे हौद वहां प्रकट हो गए, जैसे कि वैसे भोजन करने के बाद भी अभी तो अदृश्य हो गए थे फिर प्रकट हो गए। तो भगवान ने बताया कि उनको कैसे बांटना है, बहुत विस्तार पूर्वक बताया, पहले किसको देना है, पहले बूढ़ों को देना है, बच्चों को देना है, महिलाओं को देना है, साधु ऋषियों को, ब्राह्मणों को देना है, फिर गृहस्थों को प्राप्त करना है। इस तरह से बहुत आनंद से भर भर के सबने इस प्रसाद का आनंद लिया, सब ब्रजवासी इतने आनंद में थे, ऐसा ऐसा उत्सव कभी हुआ ही नहीं ब्रज में। सभी देवता भी खुश थे, एक देवता खाली परेशान था, वो था इंद्र देवता। तो लगा था अरे मेरी पूजा कैंसिल करके इतना आनंद मना रहे हैं, मैं सबक सिखाऊंगा उनको। हे संवर्तक बादलो आ जाओ इधर। तो बादल बोल रहे अरे महाराज समय तो नहीं हमारे आने का, हमारा ड्यूटी टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है, पहले काल में हमारा ड्यूटी होता है, अभी क्यों बुला रहे हैं, वो पूछने का तुम्हारा काम नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आ जाओ इधर, तुरंत जाओ उधर वृंदावन मथुरा में जाओ, और वो दंड ब्रजवासी जो है जिन्हें हमारा पूजा कैंसिल किया है वहां वर्षा करो, नष्ट कर दो वृंदावन धाम को, सब गायों के साथ सब ब्रजवासी नष्ट होने चाहिए, क्या समझते हैं अपने आप को ये गवार लोग, दूध बेचने वाले, मक्खन बेचने वाले, गाय रखने वाले, गाय चराने वाले, हमारी पूजा कैंसिल करते हैं। तो ये समर्थक बादलों को जची नहीं बात, बोले यार कैसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी का आदेश है क्या करें, चले गए और बरसाने लगे पूरा। और क्या कहते हैं उसको बाद में मूसलधार, वो होता ना मूसल, गांव में देखो मसाला कूटते हैं तो मूसल कितना बड़ा होता है, ऐसा एक बूंद बारिश का, इसलिए उसको कहते हैं मूसलधार, ऐसे एक बूंद नहीं अनंत करोड़ों बूंदे गिर रही है, धार धार गिर रही है मूसल की धार। तो कुछ ही समय में अंधेरा छा गया, दिन में बिजलियां कड़कने लगी, इतनी ठंड हो गई, इतनी भयंकर वर्षा होने लगी, घर बहने लगे, गायें बहने लगी, गौशालाएं बहने लगे, सब बच्चे कष्ट में आ गए, कांपने लगे, गैया भी अपने चार पैरों के बीच में बछड़ों को रखकर कोशिश कर रही हैं, बछड़े बारिश चले गए कितना बचाएंगी, वो पानी भरने लगा सब जगह पर बहने लगा, और सब लोग कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ कृष्ण बचाओ। देखो जिन्होंने इंद्र की पूजा कैंसिल की, जिनके वजह से गोवर्धन की पूजा की गई, वही तो कारण था ना इंद्र के कोप का, ये वर्षा क्यों हो रही है, बालक के बात मानने से हुआ ना ये। तो हम लोग अगर ब्रजवासी होते तो कहते अरे तुमने ही हमको इतने कष्ट में डाला, तो उसको कोई पुकारेगा क्या, लेकिन वो ब्रजवासी है, वो हम लोग नहीं है, तो ब्रजवासी उनकी श्रद्धा अटूट है, ऐसा नहीं कहा कि तुमको क्यों पुकारे हम, तुम्हें तो सबकी जड़ हो, तुम्हारी वजह सब कुछ हुआ, तुम्हारी बात नहीं मानते तो हम कब तक बच जाते इंद्र के कोप से, देखो तुमने हमारा कितना संकट खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं उसको ही पुकारा। और वो क्या बोलता है चलो मेरे साथ, तब ऐसा नहीं बोले अभी कहाँ ले जा रहे हो, कितना वर्षा करवा रहे हो, ऊपर से कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाएंगे आपके पीछे। श्रद्धा से उनके पीछे गए, गए उधर और एक जगह खड़े हो गए, और कृष्ण क्या बोलते हैं, बाल बाल पूछते हैं क्या करोगे अभी तुम, बोले पर्वत को उठाऊंगा, है ना, अरे आपके घर का आपके बेटे का नाम क्या, अरे जगन्नाथ छोटा सा बालक है ना, तो अगर वो बोलेगा आप बोले क्या करोगे बेटा, मैं भक्ति विदन हॉस्पिटल को उठाऊंगा मैं, तो आप क्या बोलेगा, अरे वाह क्या बात है ना बच्चा बढ़िया बात कर रहा है, आपको लगेगा आनंद की बात है, बच्चा को क्या समझता है, वैसे ही कृष्ण बोल रहे हैं सबको लग रहा है क्या पर्वत उठाओगे, तो बोले नहीं उठाऊंगा मैं, बोले कैसे मानूं मानेंगे, तो एक ऐसा कदम का पेड़ लिया उसको उखाड़ दिया भगवान ने, और ऐसा कपड़े की तरह निचोड़ दिया उसको, तब जाकर ग्वाल वालों को थोड़ा विश्वास हो गया कि कुछ कर सकता है कन्हैया। उधर एक गांव है प्रविष्ट वन, उसमें प्रविष्ट वन में प्रवेश किया, प्रविष्ट गुफा है वहां पर, वो गुफा में प्रवेश किया, जमीन के अंदर प्रवेश किया और गिरिराज को जमीन से अंदर उठाया, सबके आंखों के सामने गिरिराज जी कर 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 करके उठाया आकाश में, और भी छोटी उंगली में बाएं हाथ की, मतलब क्या हमारे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है बाएं हाथ की छोटी उंगली, देखो कोई हम इससे कुछ उठा दे क्या? हाँ, राइट हैंड से अंगूठे से उठाएंगे, इससे उठाएंगे, बाएं हाथ की उंगली से कुछ उठाएंगे? तो मतलब भगवान ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से इंद्र का सबसे अधिक शक्ति जो है परास्त कर दिया, ऐसा उठा के खड़ा कर दिया। तो संवर्तक बादल ना मतलब उठाया तो सब ब्रजवासी को बोला आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। सब लोग अंदर आ गए और गिरिराज जी सब इतना विस्तारित हो गए, सबको अंदर लेने की छतरी की तरह अंदर लेने के, सबके लिए बड़े हो गए वो, सब अंदर आ गए। उसके 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा और वो समर्थक बादल बिचारे पूरा वर्षा कर करके थक गए बिचारे और पानी के टैंक खाली हो गए उनके। तो गए इंद्र के पास, महाराज क्या करें, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, तस से मस भी नहीं हुआ है, बोलते एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिरा है अब तक इतना वर्षा किया हमने, बोले जब मूर्ख लोग वापस क्यों आए तुम? तो उसमें ना एक बात उन्होंने समर्थक बादल ने कही है इंद्र को, ऐसे वो मतलब परेशान तो हो गए वो कि हमने इतना जल बरसाया तो पूरा प्रलय हो जाता है इतना जल बरसाने से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ब्रज में, कुछ भी नहीं हुआ है, ना गोवर्धन का कुछ बाल बाका हो गया, ना ब्रजवासियों का हुआ है। चलो तो उल्टा दुखी होने के, हम लोग ऐसे बारिश आ गया ना, हम लोग अपने घर पे हैं फिर भी बहुत तूफानी बारिश में घर में ही परेशान रहते हैं हम लोग, अरे कभी रुकेगी कभी रुकेगा उतरूंगा नीचे, अरे ये लोग अंदर परेशान नहीं है, अरे महोत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बाप रे क्या मजा आ रहा है उनको सब लोगों को। तो 7 दिन के बाद में ना उनका पानी रुक जाता है, तो जाके इंद्र को मिलते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इंद्र को एक अच्छी बात बताते हैं, वो क्या बात बताते हैं, पता नहीं हमारा क्या भाग्य था कि हमने ऐसा सुंदर दृश्य देखा, हमने क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि हमने कन्हैया जी को गिरधारी धारण करके इतना आनंद की अवस्था में देखा, ऐसे उन्होंने कहा है। तो इंद्र कहते नहीं अभी मैं आता हूँ, इंद्र आ गया, उन्होंने अपना वज्र प्रहार किया उसके ऊपर, चलो भाई तुम्हारा पानी खत्म हो गया, मैं भी मेरा सर्वोत्तम शस्त्र का प्रहार करता हूँ। शस्त्र का प्रहार किया फिर भी तस से मस नहीं हुआ, तब जाकर इंद्र की ट्यूबलाइट जल गई है ना, तब होश में आ गए, बाप रे बाप, मेरे वज्र का जो क्या कहते हैं मुकाबला जो है ना वो तो केवल कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये बालक कृष्ण है, अरे बाप रे ये तो स्वयं कृष्ण है, तो मेरे भगवान है, आराध्य दैवत है मेरे, अरे बाप रे अभी तो समझ में आया उनको कि हमने बड़ा गड़बड़ कर दिया अनजाने में गर्व के परिणाम प्रभाव में। तो फिर नीचे आए तो अभी भी कृष्ण उठाए खड़े थे, तो इस तरफ से आए ऐरावत पर बैठ कर, तो भगवान ने जान बुझकर उधर देखा, फिर उधर से आए तो इधर देखा, तो समझ गए कि अभी देखने का मूड नहीं उनका, डर गए पूरे कि अभी कोई खैर नहीं हमारी, सीधे बृहस्पति के पास गए अपने गुरु जी के पास और सब बताया। तो बृहस्पति ने कहा मूर्ख नंबर 1 हो तुम, देखो किसको बोल रहे हैं, वो देवताओं के राजा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, अरे मूर्ख नंबर 1 हो, हाँ तुमको अकल नाम की बिल्कुल चीज नहीं है, तुमने किया ही ऐसा काम है, बहुत खतरनाक काम किया, तुमको कौन बचा सकता है? बोले महाराज दंडवत करते हैं आपको, आप बताइए, हम मूर्ख है नंबर 1 है मानते हैं, हमें करना क्या है बताइए, उनको बचाइए इस अपराध से। तो कहते ब्रह्मा जी भी आए उस समय, ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा उनको, तो बोला अब एक ही आपको उपाय है, कोई भक्त आपको, अगर आप भक्त की शरण लेंगे ना और भक्त आपको शरण में लेता है और आपकी सिफारिश भगवान से करता है तो ये आप बच सकते हो, ये भी हमारी एक ऐसी विचारधारा है, इसमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनके हाथ में है, उनको पता नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। देखिए देवाधिदेव इंद्र जो है ना, देवेंद्र वो पृथ्वी पर आते हैं, तब तक तो इन्होंने पर्वत को नीचे रखा, सब ग्वाल बालों को बाहर निकाला, फिर पर्वत को नीचे रखा और फिर इंद्र भगवान आए और सुरभि गाय के शरण में गई, पहले तो पश्चाताप किया, उधर एक स्थली है पश्चाताप की, पश्चाताप किया, सुरभि के शरण में आए, बोले माया माफ कर दो भगवान से, हमारी सिफारिश करो, हमने बड़ा अपराध किया है, कुछ करो हमारे लिए। सुरभि गाय ने ऐसा नहीं बोला, अभी आए हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती, हम सबको मारने को निकले थे, हमारा सारा वंश खत्म करने का विचार था आपका, हमारे मालिकों को नष्ट करने का विचार था, हमारा गांव नष्ट करने का विचार था, चले जाओ यहाँ से, मुंह दिखाने के लायक नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने कृष्ण भगवान के गिरिधारी रूप का दर्शन करके इतना आनंद प्राप्त किया था, सब दुख कलमश सब नष्ट हो गए थे उनके। देवकी का भी ऐसा ही है, देवकी ने कंस को माफ क्यों किया, देवकी कंस को माफ क्यों कर सकी, इतना भयंकर उसके अपराध हुए, 6 बालकों को पीस पीस कर मारा, फिर भी कंस जब चरणों में गिर गया तो माफ क्यों किया उसको, माफ कैसे कर सकी वो, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले वो कृष्ण का दर्शन कर चुकी थी। कृष्ण का दर्शन होने से हमारे मन के किंतु परंतु सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, याद भी रहती उसकी। तो जब कंस शरण में आया तो उसके कुछ ही समय पहले, कुछ ही घंटे भी नहीं होंगे शायद, उसी समय कुछ समय के बाद में खाली वो जाके आए वगैरह वगैरह सब होगा, उसके बाद में कुछ ही घंटे पहले इतना उनका हृदय आप्लावित था प्रेम प्रेम भावना से कि वो कुछ दुख का याद नहीं रहा, तुरंत कंस को क्षमा कर दिया। वैसे ही इतना बड़ा आतंक किया जिंदगी पर आतंक किया था, लेकिन कृष्ण का 7 दिन 7 रात गिरिराज के रूप में धारण किए हुए जो दर्शन का आनंद लिया ना, सब दुख दर्द सब खत्म हो गए, याद भी नहीं बची उसकी दिमाग के अंदर। और फिर वो लेके आए भगवान के पास। इससे कहते हैं उस समय पहली बार कृष्ण ने इंद्र की ओर मुड़कर देखा, पहले देखते भी नहीं थे लेकिन थोड़े खुश थे वो इंद्र से। इंद्र ने जो भी क्या कहते हैं उद्दंडता की ना, उसके वजह से सभी रसों के भक्त एक साथ आ गए, 7 दिन 7 रात एक जगह पर रहे और पूरा आनंद लिया, उसका वर्णन बाद में करेंगे। तो फिर इंद्र भगवान के शरण करते हैं और माफी मांगते हैं, भगवान भी डांटते हैं उनको, क्षमा कर देते हैं। तो इंद्र को भी सोचा कि हमने अपराध तो करे, अभी रिझाना भी चाहिए उनको, उनको रिझाना चाहिए। तो पूछते हैं कि हम आपका अभिषेक करेंगे, तो ठीक है अभिषेक करो। तो ऐरावत आकाश गंगा, स्वर्ग से गंगा है आकाश गंगा उसका नाम है, स्वर्ग की गंगा को आकाश गंगा कहते हैं। तो वहां से 5 कुंडों में भरकर पानी लेके आते हैं, ऐरावत कुंड बनाते हैं और अप्सराएं अपना कुंड बनाते हैं और ब्रह्मा जी 108 कुंड बनाते हैं, बहुत सारे कुंड बनाते हैं। और सुरभि अपने दूध और इंद्र आकाश गंगा के जल से कृष्ण का अभिषेक करते हैं। वरुण देव को सिंहासन लाने को बोलते हैं, क्षत्रिय लाने को बोलते हैं वायु देव को, और अपने अपने स्वर्ग लोकों के देवताओं के जितने भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं सब बेस्ट बेस्ट चीजें वहां लाते हैं और कृष्ण का धूमधाम से ऐश्वर्य संपन्न अभिषेक कर देते हैं। तो सब ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे हैं, ये बड़े तेजपुंज देवता लोग हैं, सब आके हम पर भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारे कनुआ की सेवा कर रहे हैं। तो फिर जब चले जा रहे हैं लोग अपना अपना साहित्य वहां छोड़ के जाते हैं, तो ग्वाल बाल आके कन्हैया को मिलते हैं, अरे कन्हैया अरे क्या ठाट है तुम्हारे, हम भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने भी एक पत्थर पर उसको बिठाया और गाय के दूध से और पानी से अभिषेक कराया। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं उसको, बृहद भागवतामृत शास्त्र में भगवान कहते हैं कि मुझे इंद्र के अभिषेक में इतना आनंद नहीं आया जितना मुझे ग्वाल बालों के सिंपल से अभिषेक में आनंद आया। तो जो इंद्र ने अभिषेक किया था ना, उसके वजह से गोविंद कुंड बना, उसका जल जो एकत्रित हुआ चरणामृत, और वहीं पर इंद्र ने घोषित कर दिया कि आज से हम हमारे इंद्र हैं, आपका नाम गोविंद होगा, गा विंदति इति गोविंदहा। तो आप इंद्रियों के भूमि के और गौ के स्वामी के रूप में, वृंदावन के नाथ के रूप में आप हमारा हम आपका गौरव करते हैं, आज से आप गोविंद कहलाएंगे। उसके बाद में ग्वाल बालों ने अभिषेक किया है। इस तरह से ये गर्व हरण की कथा है, भगवान के सामने कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, भगवान को चकनाचूर कर देंगे। अगर आप वास्तव में प्रामाणिक भक्त हैं और कभी गर्व करते हैं तो भगवान आपके गर्व को चकनाचूर कर देंगे। और भक्त के बिना कोई सहारा नहीं है, कितने भी बड़े होंगे हम, इंद्र जैसे भी बड़े होंगे, इसको बंद करो, इंद्र से भी बड़े होंगे तो भी नम्र होकर एक नम्र भक्त का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर हम माफी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये लीला है गोवर्धन का, बहुत सुंदर लीला है। इसमें बहुत विशेष हमारे जो राधा गोविंद जी महाराज है वो 7 दिन तक लीला का वर्णन करते हैं, 7 दिन तक गिरिराज लीला का वर्णन करते हैं। एनीवेज तो अभी हम परिक्रमा आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए ये परिक्रमा का रास्ता है ना, कैसे बताएं, यहाँ पर पॉइंटर तो है नहीं। गिरिराज पर्वत जो है ना वो छीटरली लेफ्ट में जो एक छोटी सी चीज है वो गिरिराज पर्वत है, और उसकी परिक्रमा जो एक बीच में लाइन जाती है वो वाली परिक्रमा को बड़ी परिक्रमा कहते हैं, ये वाली परिक्रमा को छोटी परिक्रमा कहते हैं। हम लोग वो पूरी परिक्रमा करते हैं और उसके आगे एक दीर्घ परिक्रमा है ना। तो ये जो ब्लू है ना ये शायद यमुना जी का जल है, यमुना जी बह रही है, और बाकी नंदगांव बरसाना गोवर्धन से 19 किलोमीटर आगे है, 19 से 7 किलोमीटर आगे नंदगांव है, और वहाँ से 28 किलोमीटर वृंदावन है, ऐसा ये सुंदर दृश्य है। तो ये गोवर्धन पर्वत का दर्शन हो रहा है, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो, श्री गोवर्धनाय नमः, श्री गिरि गोवर्धन की जय हो, हरिदास वर्य गोवर्धन की जय हो। देखिए गोवर्धन जो गो के वर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ये है गोवर्धन जी महाराज, जिसकी गैया बैठी है। बहुत बहुत अद्भुत पर्वत है ये, इतना लंबा पर्वत कद का नहीं, लेकिन विस्तार बहुत बड़ा है इसका। तो क्या क्या करना चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा करते समय निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, कोई बेफजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बैठ के परिक्रमा दे रहे तो सोना नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। हाँ, और कोई भी शिला उठाना नहीं चाहिए। बेस्ट यह है कि हम उपवास करें, हम लोग तो भोजन करके आए हैं अच्छी तरह से, धान्य का कॉन्स्टेंटली गोवर्धन को निहारते रहना चाहिए, पाद सेवन उनका भाव होना चाहिए। और हम पहले ही बता दिए कि गोवर्धन की परिक्रमा सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने की थी, और गोवर्धन परिक्रमा तीन चार विभाग में कर सकते हैं। ब्रज को छोड़ना नहीं चाहिए तब तक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा से गोवर्धन परिक्रमा आरंभ की थी, हम भी वहीं से आरंभ करेंगे। परिक्रमा कई प्रकार की होती है, आम परिक्रमा पैदल होती है जो करनी चाहिए, नंगे पैर से पैदल परिक्रमा देनी चाहिए, ये बेस्ट परिक्रमा है। उसके बाद में बच्चे लोग ठेले में बैठ तो परिक्रमा करते हैं ना, कोई गर्भवती स्त्री है, कोई बूढ़ा है, कोई वृद्धावस्था में है, तो बालक है, तो ये ठेला वाले उनको बैठ कर परिक्रमा कराते हैं। और एक परिक्रमा होती है दंडौती परिक्रमा, और दंडौती परिक्रमा एक वाली भी होती है, 11 वाली भी होती है, 51 वाली भी होती है, 108 वाली भी होती है, 1008 भी होती है। मतलब क्या, एक जगह पर या तो एक दंडवत करेंगे, या तो 11 करेंगे, या तो 21 करेंगे, या तो 51 करेंगे, या तो 108 करेंगे, या तो 1008 करेंगे। और ये पत्थर जो आगे पीछे है ना, तो पीछे वाले आगे करेंगे तो 108 पूरे हो जाएंगे, फिर उसके आगे वापस पत्थर लगाएंगे तो 108 दंडवत करेंगे। तो ये शायद 108 वाला है, 108 दंडौती परिक्रमा दे रहा है। तो ऐसे कई महीने लगते हैं, 3.5 महीने 4 महीने लगते हैं, और वहीं रहते हैं वो, जहाँ पर अपने आज का सुबह शाम तक दे दिया वहीं पर रहते हैं, वहीं पर भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, स्नान करते हैं, वहीं से आरंभ करते हैं आगे, ऐसा है। तो हमारा ये मानसी गंगा में हम लोग भी आए हैं। मानसी गंगा के संक्षेप में कहानी ऐसी है, कृष्ण भगवान नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों के साथ में एक बार गिरिराज गोवर्धन पे गंगा जी की महिमा की कथा सुन रहे थे। तो उस कथा में जो कथाकार थे वो बता रहे थे कि एक बार एक सांप को पकड़कर गरुड़ जी उड़ रहे थे। सांप तो उनका भक्ष है ना खाने के लिए, तो उठाया सांप को और कहीं बैठ के खाने का विचार था, तो लेके उड़े तो गंगा जी के ऊपर से उड़े। तो पक्षी जब उड़ता है ना तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है ऐसे, तो थोड़े नीचे हो गए तो सांप हाथ में जो सांप पकड़ा है ना, वो उसका पूंछ जो है वो गंगा जी के जल में स्पर्श हो गया। जैसे ही गरुड़ जी के हाथ में पकड़े हुए सर्प से गंगा जी का स्पर्श हुआ, तुरंत उस सर्प का विष्णु दूत में रूपांतर हो गया, चतुर्भुज विष्णु का सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया उसको। तो ऐसे पकड़ा था तो ऐसे हो गया ना हाथ, मतलब तो बड़ा हो गया ना, दिखा रही क्या हो गया। तो सांप को पकड़ा था वो सांप सर्प था, वो विष्णु दूत बन गया, वैकुंठवासी शरीर प्राप्त हो गया उसको। तो तुरंत गरुड़ जी तो विष्णु के बहाने, देखिए तो मेरा आराध्य है, तो मेरे भक्ष नहीं बचे अभी, तो कंधे पर लिया उनको और वैकुंठ ले गए, आना माना दूर रह गया। तो ये कथा जब नंद महाराज ने सुनी तो वो सभा में ही खड़े हो गए उधर, अब भी चलना है गंगा जी में स्नान कर, इतने प्रभावित हो गए वो, इतने प्रेरणा मिली उनको। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, अरे बाबा क्यों ब्रज को छोड़ के जा रहे हो, नहीं नहीं आपको पता नहीं है गंगा जी का क्या महिमा है, देखो सांप जैसे निचली योनि को भी स्पर्श करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वैकुंठवास प्राप्त हो सकता है, हमें अब भी जाना है वहां पर। बोले बाबा आप काम करो, आप मेरे साथ चलो, आप ठीक है चलो। तो उनको गोवर्धन के बीच में लेके आए, तो गोवर्धन के बीच में लेके आए, और क्या कहें आपको, बड़े बड़े बाल बाल खड़े हैं, उपनंद बाबा हैं, नंद बाबा हैं, सब खड़े हैं उधर, उनके सबके आंखों के सामने इसके कृष्ण के हृदय से गंगा जी प्रकट हुई, सबने देखा। और गंगा जी प्रकट होकर पूरी मगरमच्छ के ऊपर बैठकर चार भुजा वाली गंगा देवी सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर, महाराज जी क्या आज्ञा है, हे भगवान क्या आज्ञा है मेरे लिए, साक्षात गंगा और हमारे बालक को हाथ जोड़कर वंदन कर रही है, आज्ञा मांग रही है, कौन है हमारा कन्हैया, बड़े ठाट है इसके। उसके ऊपर और एक आश्चर्य, बड़े ठाट से कन्हैया जी आदेश दे रहे हैं, तुम्हारे जल को यहाँ प्रकट करो, हमारे ब्रजवासी यहाँ स्नान करेंगे। दूसरा आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य, आज्ञा पालन भी कर रही है गंगा, सबके आंखों के सामने गंगा जी ने अपना जल यहाँ प्रकट किया और समुद्र जैसा विशाल एक कुंड तैयार किया। आज के तारीख में भी ब्रज का पूरा सबसे विशाल कुंड ये है। आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर आप थोड़ा सा लंबी लंबी सांस लो। तो आज के तारीख में भी ब्रज का सबसे विशाल कुंड है ये। तो फिर वो जल जल प्रकट हो गया तो वो मानसी गंगा कहलाया, क्योंकि तो कृष्ण के मन से प्रकट हुई थी गंगा जी। तभी विश्वास हो गया उनको, गंगा जी यही प्रकट हो गई बीच में गोवर्धन के मध्य में। तो सब ब्रजवासियों ने स्नान किया और तब से गंगा जी को यहाँ पर निवास मिला वृंदावन धाम में। और इसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि तो यमुना जी जब प्रकट हुई तो यमुना जी का क्या भाग्य था? यमुना जी का भाग्य था कि जन्म होते ही, मतलब कृष्ण का जन्म होते ही, अभी तो कृष्ण के जन्म होकर कुछ समय भी, एक चरण भी, एक नक्षत्र का चरण भी बदली नहीं हो गया है। एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो सेकंड चरण में देवकी नंदन कृष्ण का जन्म हुआ था, तो बीच में समय था उसमें जाकर वो गोकुल गए थे, तो अभी कुछ समय भी नहीं हुआ था, लेकिन तुरंत कूद पड़े यमुना जी के जल में। यमुना जी को जल में जन्म लेते ही यमुना जी को चरणामृत बना दिया उन्होंने, और बाद में भी कितना अंग संग दिया यमुना जी के अंदर। तो बड़ी बहन जो यमुना जी की गंगा जी है, वो यमुना जी से कहती है, बेटी मतलब बहना, आपको कृष्ण का इतना संग मिला है, हमारी भी कुछ सिफारिश करो, हमें भी कुछ ब्रज में स्थान मिले, कुछ सेवा करने का मौका मिले। तो यमुना जी के सिफारिश से भगवान ने गंगा जी को ब्रज में लाने का ये लीला किया और गंगा जी को ब्रज में स्थान दिया। वैसे ब्रज में कोई गंगा जी का काम नहीं है, वैसे गंगा जी तो इलाहाबाद, वहाँ पर हरिद्वार, वहाँ पर हिमालय में घूमती है, लेकिन उस गंगा जी को सेवा की अभिलाषा से भगवान ने गिरि गोवर्धन वृंदावन धाम में आश्रय दिया। और फिर वो कुंड वहां विराजमान, तो खाली थोड़े पड़ा रहेगा कुंड, भगवान ने वहां नौका विहार किया। बहुत सुंदर कहानी है नौका विहार की, कैसे भगवान को एक बार गोपियां वहां पर निकली थी मथुरा जाने के लिए, और सब शाम का समय हो गया था, कोई नाव नहीं थी वहां पर, बहुत ढूंढा अभी कैसे जाएंगे, तो बुढ़ा नाभिक मिला, सोया था बेचारा, तो कहा था कि आप चलोगे? हाँ चलोगे। फिर वो टैक्स तय करते हैं कितना देना है, तो वही थोड़ा मटका देंगे आपको, और चलाना चालू करते हैं, देखो फिर दर्शन कर लो, मानसी गंगा का स्नान कर लो, आचमन कर लो, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। देखिए कितना सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर, विशाल समुद्र की तरह। फिर देखिए ये नाव का दर्शन कीजिए, है ना, ऐसे टूटी फूटी नाव थी, ऐसा ही पूरा जीर्ण एक नाभिक था, बैठ गए सब लोग गोपियां मटका वटका लेके, थोड़ी देर चलाया, बाद में क्या बोलता है, भूख लग रही है बहुत, तो हमारा कर जो है वो दे दो हमको, तो मक्खन वक्खन खिलाया जो भी था तय हुआ था। फिर थोड़ी देर चलाया, फिर रुक गया, फिर बोलता है अभी वो मक्खन खाया ना पेट भर के, नींद आ रही है, थोड़ा सा मैं सो जाता हूँ, फिर क्या करेंगे अभी, देखो आप कोई किसी का टैक्सी कर लिया आपने, और ड्राइवर बोलता है मेरे को खाना खाने का है, तो आप क्या करेंगे, बैठना पड़ेगा आपको, ड्राइवर खाना खा रहा है, बैठ गए आराम से। तो वैसे ही वो बोलता है मैं सोने का है, अभी बीच जल के अंदर सोने का है, उसको भी क्या कहें, क्या ना आगे जाना ना पीछे जाने के लिए। तो फिर बोलते हैं कि मेरे को सोने के समय ना थोड़ा मसाज देने की आदत है, तो आप लोगों को भी कुछ मेरे पैर ले लो, कुछ हाथ ले लो, मसाज करो, बोले एक थप्पड़ मारेंगे आपको अभी। तो फिर थोड़ा विश्राम करता है और आगे चलने, तो आगे चलता है तो फिर रुक जाता है। तो अभी क्या हो गया, बोलते अभी बहुत पानी आ रहा है गाड़ी के बोट के अंदर, देखो इतना छेद हो गया है, वो पानी आ रहा है, तो अभी क्या करें। तो बोले आए जो आपके मटके हैं ना बहुत भारी है, सब पानी में फेंकने पड़ेंगे आपको। अरे जिसको बेचने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए नाव किया था उसको, देखो मत बेचो, मत फेंको उसको, खुद सब डूब जाओ मक्खन के साथ में, अभी जिंदगी बचानी तो फेंकना ही पड़ेगा, इतना मूल्यवान मटके सब फेंक दिए पानी में। फिर चले थोड़े आगे चले, फिर रुक गया, अभी क्या हो गया, अभी भी नाव भारी है, देखो 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 पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो अभी क्या करें, तो इतने जेवर पहन के रखे हैं, इसका वजन है ना, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। तो फिर जेवर उतार के फेंक दिए, तो अभी थोड़ा ठीक है, बोलते अभी थोड़ा ठीक हो गया, तो आगे चलाते। उतने में आगे चलाने के बाद में क्या होता है, बड़ा तूफान आता है और बादल आ जाते हैं, आंधी बिजली कड़कने लगती है, इतनी जोर से कड़कती है बिजली, तो राजा रानी जो है ना जाके नाभिक को गले मिलती है, एकदम डर के मारे आलिंगन देती है। जब आलिंगन देती है तो पता चलता है कि नाभिक वाभिक कोई नहीं है, तो कृष्ण कन्हैया है। है ना, फेटा वेटा बांध के मूछ लगा कर बैठा हुआ है बुढ़ा बनकर, सब निकाल लेते हैं उसका, मुरली भी छीन लेते हैं। तो पूछते क्या हुआ आज ऐसा लीला क्यों किया, बोले आज ये मानसी गंगा में बीच में आकर लीला करने का विचार था हमारा। तो तुरंत फिर वहां पर जो नाव, जो टूटी फूटी नाव थी वो ऐसे सुंदर नाव बन गई, देखो इतनी सुंदर नाव बन गई, बहुत सुंदर कमल खिल गए मानसी गंगा के अंदर, चंद्रमा खिल गया, हाँ सब गोपियों ने अपने वाद्य बजाए, गीत बजाए, भोजन बनाया आरोगा भगवान को, और उन्होंने रात भर नौका विहार किया। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा जी की एक रात तक, हाँ करीब करीब 185 करोड़ साल, 132 करोड़ साल तक उन्होंने पृथ्वी के 132 करोड़ साल तक नौका विहार किया, लेकिन पृथ्वी में केवल एक तिथि बदली हुई। एक पृथ्वी की रात में ब्रह्मा की एक रात उन्होंने समेट ली और उतना गोपियों को नौका विहार का आनंद दिया। तो ये नौका विहार की भगवान की बड़ी प्रिय स्थली है मानसी गंगा। आइए इसमें हम लोग आचमन करते हैं और आचमन करने के बाद चलते हैं आगे, हरिदेव के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं हम। चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में स्नान किया, फिर हरिदेव का दर्शन किया। देखिए हरिदेव महाराज की जय हो। ये बज्रनाभ की बनाई हुई मूर्ति है और यहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित की थी, लेकिन वो मुसलमानों ने आकर उसका भंग किया, तभी उनको मूर्ति को लेकर वो कानपुर गए। तो आज ओरिजिनल मूर्ति कानपुर के एक मंदिर में है, उसके बाद आतंक शांत हुआ तो प्रतिभू मूर्ति को वहां पर स्थापन किया उसी स्थान पर। तो हरिदेव का दर्शन करके हम प्रणाम करते हैं हरिदेव जी को कि हमारी गोवर्धन परिक्रमा आप सफल कराएं, और फिर आगे बढ़ते हैं। उधर ही पास में हरिदेव मंदिर के पास में मानसी गंगा के मनसा देवी जी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी प्रणाम कीजिए, भगवान की शक्ति है, आशीर्वाद लीजिए। अगर हम आगे चलते हैं, दूर से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मुखारविंद मंदिर। ये दो मुखारविंद है, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य के अनुसार जतिपुरा में जो मुखारविंद है वो मुखारविंद सही है, और ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनके अनुसार ये मुखारविंद सही है, दोनों मुखारविंद सही है, दोनों मुखारविंद बोनाफाइड है। तो दूर से वो मंदिर है, इसका दर्शन कीजिए। ये मुखारविंद शिला है, यहाँ पर 56 लोग लगाते हैं रोज, तो उसको प्रणाम कीजिए मुखारविंद शिला को। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही वो दान घाटी आती है। दान घाटी में जो सफेद रंग का मंदिर है ना, वो दान घाटी का मंदिर है। इसके अंदर भी एक बड़ा विशाल शिला है जिसको बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, और योगायोगवश इस शिला का श्रृंगार और नाथद द्वार के नाथ जी का श्रृंगार सेम होता है। कुछ तो लोगों ने ये हवाई जहाज से जाकर ये प्रूव भी किया हुआ है। ये भगवान की प्रेरणा से होता है, अपने आप ही वहां पर जो श्रृंगार होता है वही श्रृंगार नाथद द्वार में होता है। तो दान घाटी में लीला ऐसी है कि दान घाटी में, दान घाटी किसको कहते हैं, घाटी किसको कहते हैं, गोवर्धन में हम चढ़ नहीं सकते लेकिन गोवर्धन को आर पार जाने के लिए ऑफिशियल रास्ते हैं, इसको घाटी कहते हैं। एक तरह से आप अंदर चढ़कर दूसरी तरफ जा सकते हैं, ऐसे अनेक घाटियां हैं गोवर्धन में, कुशेश्वरों के पास में घाटी, आगे भी घाटियां हैं। तो गोपियां वहां पर आया करती थी, कृष्ण यहाँ से उनको रोकते थे मथुरा जाने के रास्ते पर, और कर लेते थे उनसे, उनको तंग करते थे। तो ये दान घाटी को प्रणाम कीजिए, जैसे हमने साकरी कोर को प्रणाम किया था वैसे उसको प्रणाम कीजिए। सततम गोपियम गमागमौ और सततम नमश्चरेत, ऐसे हमने कहा था उधर, तो ये उसका प्रणाम कीजिए। आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहले लेफ्ट टर्न लेके सबसे ये बड़ी कर परिक्रमा जो परिवासी करते हैं ना वो शुरू हो गई। तो ये राधा कृष्ण के चरण चिन्ह है, ये चरण शिला कहते हैं उसको, यहाँ पर प्रणाम करते हैं हम लोग। और बाकी सब शिलाएं आपको नजर आ रही है ना पीछे, बहुत सुंदर सुंदर शिलाएं, ये विशेष शिला है राधा कृष्ण की चरण चिन्ह की शिला है, उसको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दानी राय का मंदिर है जो गिरिराज के ऊपर था, जो दान लेने में बहुत निपुण है, गोपियों को आनंद देते हैं तंग करके। तो ये दानी राय का मंदिर, दानी राय का विग्रह था उसके अंदर, लेकिन वो मुसलमानों ने उसको भ्रष्ट कर दिया, इसलिए अभी उस पर पूजा नहीं होती है, वैसा ही मंदिर है। और यहाँ से हमको सबसे पहले दर्शन अच्छी तरह से आरंभ होता है गोवर्धन जी का। तो आप देखते देखते आगे बढ़िए, फिर हम आएंगे लेफ्ट साइड में हमारे इस्कॉन भजन आश्रम में, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाए हैं, गिरिराज महाराज, कमाल कृष्ण महाराज, केशव भारती महाराज ने मिलकर। और ये भजन आश्रम है, यहाँ पर ज्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं होते हैं, बड़े बड़े गुफा जैसे कमरे बनाए हैं, उसके अंदर साधु लोग आते हैं, एकांत भजन करते हैं, अपना हेल्थ को भी ठीक करते हैं, और व्रत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात जप करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा देते हैं, एकांत में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है, और फिर वापस चले जाते हैं अपनी सेवा में। तो इसमें देखो अनंत शिलाओं को सजा के रखा है और हर शिला पर कुछ ना कुछ डिजाइन है, कुछ ना कुछ लीलाओं का चित्रपट ग्वाल बालों ने बना के रखा हुआ है। आप अभी कभी जाओगे ना वृंदावन धाम में तो आपको गौर से देखने मिलेगा, तो इसके अंदर राधा कृष्ण ग्वाल बाल गैया वराह अवतार मत्स्य अवतार सब प्रकार की लीलाएं देखेंगे आपको। मुझे एक बार एक ब्रजवासी ने ना एक बड़ी शिला पर महाभारत का युद्ध सीन दिखाया था, कौरव पांडव कृष्ण अर्जुन सब सब रथ और सब दिखाए थे मुझे। हमको तो लिखता नहीं लेकिन वो साधु रूप में कृपा करते हैं तो दर्शन कराते हैं। तो ऐसे ही शिला प्रवेश द्वार पर बहुत शिलाएं हैं। आगे कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, दोनों गोवर्धन शिला है, सामने रंग की शिला कृष्ण है और गोरे रंग की जो शिला है वो बलराम जी महाराज है। श्री कृष्ण बलराम की जय हो। हमारी यात्रा में हम यहाँ पर प्रसाद पाते हैं, फिर आगे चलेंगे तो सामने निकलेगा तो दान निवर्तन कुंड आएगा। इसकी लीला ऐसी है कि दान घाटी पे कृष्ण भगवान ने गोपियों को रोका, गोपियां वहां पर नंदगांव पर गोपियां वहां पर नंद महाराज की तरफ से गोवर्धन के इलाके में यज्ञ हो रहा था तो उसमें अपना घी अर्पण करने के लिए देने के लिए चले थे। तो ग्वाल बालों को खबर चली कि इस यज्ञ में देने के लिए गोपियां निकली हैं, उनको रोकते हैं हम लोग। तो कृष्ण भगवान वहां गए, उनको रोक लिया, बहुत ज्यादा भैंस हो गई उनके अंदर। लेकिन आखिर में गोपियों ने मनाया उनको, देखो तुम्हारे पिताजी का यज्ञ है, हम यज्ञ में कुछ अर्पण करना चाहते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, हम आपको दोबारा कल आकर देते हैं सब कुछ। तो बात पर मान गए, तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए वहां पर, सब सारी सामग्री अपने यज्ञ में अर्पण की और उनका तय था कि कल हम वापस आएंगे। तो कल आएंगे, उन्होंने कहा कि हम सबक सिखाएंगे उनको। तो वो जिस जगह पर मिलना था वहां जाके झाड़ी में छुप गए। तो ग्वाल बाल आ गए ऐड से, अभी तुमको आज टैक्स मिलने वाला है। जैसे आए सब गोपियां झपट पड़ी उनके ऊपर, सबको अरेस्ट कर दिया और एकदम बेबस बना दिया उनको, बेसहारा कर दिया, हेल्पलेस कर दिया। फिर उन्होंने बहुत क्या कहते हैं गिड़गिड़ाए ग्वाल बाल, उन्होंने कहा कि आपको कल ना यहाँ पर सखी बनकर आना होगा, हम सखा बनकर आएंगे, आपका मटका तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आकर दान निवर्तन किया उन्होंने, मतलब अपने जो उद्दंडता की उसका निवर्तन यहाँ आके किया। कृष्ण भगवान ने गोपियों को माखन खिलाया यहाँ पर, तो दान निवर्तन किया, इसे इसको दान निवर्तन कुंड कहते हैं। तो दान निवर्तन कुंड को प्रणाम कीजिए, ये कृष्ण के और गोपियों के दान लीला के साक्षी हैं, इनके ही किनारे पे ये दान लीला होती है। जय हो दान निवर्तन कुंड महाराज की जय। दान निवर्तन कुंड का दर्शन कीजिए, पीछे गोवर्धन जी महाराज हैं। और आगे चलते हैं तो ये दान निवर्तन कुंड जो है ना, यहीं से अन्नकूट आरंभ हुआ था और यहाँ से लेकर कम से कम 2-3 किलोमीटर के अंतर की जगह है जहाँ पर कण कण में मतलब इतना भोग लगाया था भगवान को। तो यह अन्नकूट क्षेत्र है और यहाँ तक वो भोग लगाया था और यहीं पर भगवान ने आनियोर आनियोर कहा था, इसलिए गांव का नाम भी आनियोर पड़ा है। यह आनियोर गांव का दृश्य है। सबसे ऊंचे गोवर्धन का दर्शन यहाँ पर होता है। तो कहते हैं हमारे दीनबंधु प्रभु की भक्तों को देखकर वो रोमांच खड़े हो रहे हैं गोवर्धन महाराज के, हाँ वो पेड़ के रूप में भक्तों को देखकर आनंद हो रहा है, उसका दर्शन कीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये गोवर्धन की परिक्रमा का मार्ग है, इतने मक्खन जैसी मुलायम धूल है यहाँ पर, बहुत सुंदर। इसके आगे हम चलते हैं कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कीर्तन करते हुए गीत गाते हुए इस रज में नंगे पैर चल रहे हैं, चलते हैं हम लोग। और दाहिने साइड में गोवर्धन का दर्शन कर रहे हैं। देखो दो प्रकार की शिला है, एक प्रकार की शिला नीले रंग की है और एक हल्के रंग की है। तो इसमें कृष्ण बलराम का भाव है, राधा कृष्ण का भी भाव है। आप गौर से देखिए तो आपको हर जगह पर ये सांवले रंग की और गोरे रंग की शिला नजर आएगी, उसके अंदर गुफा भी नजर आएगी। गौर से देखते रहिए, देखिए कितनी गुफाएं, देखिए अभी तो मेरा पॉइंटर तो है ना यहाँ पर चलने वाला, इसमें बहुत सारी गुफाएं दिखाई पड़ रही है। इसके आगे चलेंगे तो हम अन्नकूट क्षेत्र में आएंगे, आनियोर गांव में, यहाँ पर भगवान को वो अन्नकूट भोग लगाया गया था, आनियोर आनियोर भगवान ने कहा था। तो अन्नकूट के 56 भोग का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। फिर हम संकर्षण कुंड आएंगे, ये बहुत ही सुंदर कुंड है। यहाँ पर संकर्षण भगवान का विग्रह था जो वज्रनाभ ने बनाया था, 4.5 फुट की ओरिजिनल मूर्ति थी और वो स्थापन करी थी उन्होंने, संकर्षण कुंड भी स्थापन किया था। बजरनाथ जी महाराज ने, लेकिन फिर समय के अनुसार जब मुसलमानों का आतंक हुआ तो पुजारी लोग संतकृष्ण भगवान की मूर्ति संतकृष्ण कुंड में डालकर भाग गए। यथावकाश जब आतंक समाप्त हुआ तो उन्होंने किसी ब्रजवासी को दर्शन दिया संतकृष्ण भगवान ने कि मैं इसमें अंदर हूँ, मुझे निकाल के दोबारा प्रस्थापित करो। तो फिर उन्होंने उनको दोबारा प्रस्थापित किया और उसके बाद में जब हम जाने लगे वृंदावन धाम में तब तो इतनी गंदी गटर जैसी अवस्था हो गई थी उस कुंड की दुर्लक्ष की वजह से। और कोई मूर्ति का ध्यान रखने के लिए नहीं है, कोई कुंड का ध्यान रखने के लिए नहीं है। हम लोग ने मैं तो कितनी परिक्रमा लगाई, किसी को बताया भी नहीं कि संकर्षण कुंड, इतनी बदबू आती थी वहां पर। फिर हमारे परम मित्र हैं विनीत नारायण जी, ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत प्रेम से इस कुंड का जीर्णोद्धार किया है। और देखिए इस कुंड के पीछे एक सफेद रंग का मंदिर देखो गिरिराज पर्वत के ऊपर दिखाई पड़ता है, वो गोपाल जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी महाराज का यहाँ प्रकट हुए थे, उनका मंदिर है। तो देखिए ये संकर्षण कुंड है, सफेद रंग का मंदिर गोपाल मंदिर के दिखाया है, बहुत सुंदर जल था। अभी उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो खड़े है ना पानी दे रहे हैं तो वो शायद मैं हूँ, और बाजू में हमारे मित्र खड़े हैं, हमने उनका सबसे पहला अभिषेक हमने करवाया था। बहुत सारे बड़े हंडे हैं भरकर ऊपर चढ़कर हमने 40 फुट की सॉलिड रॉक की मूर्ति लगी, उसमें से कुछ 16 फीट जमीन के अंदर है और 24 फुट जमीन के ऊपर केवल विग्रह विग्रह है। हाँ, तो इसका उद्घाटन हमने वहां पर कैंप में थे, हमको बुलाया गया, भाग्य था हमारा परम भाग्य कि हमने इनका अभिषेक किया। और देखिए इतना सुंदर प्रेक्षणीय स्थल बना दिया उसको। हाँ, दूर जो है ना खड़ी उस फव्वारे के आगे वो संकर्षण भगवान की मूर्ति है। देखिए संकर्षण कुंड का दर्शन कीजिए, फव्वारे का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर। अभी ये संकर्षण की मूर्ति के पास में से उल्टा फोटो निकाला है, कितना सुंदर दर्शन किया है फव्वारा संकर्षण भगवान। और ये ओरिजिनल मूर्ति है 4.5 फुट की संकर्षण भगवान की, उसका भी पूजन हो रहा है, 24 फुट के मूर्ति का पूजन भी हो रहा है, उसके उत्सव मूर्ति भी है, तिरुपति से ब्राह्मण लाया है, उसका अलग मंदिर छोटा बनाया है, उसको सब भोग लगाया जाता है रोज का, बहुत सुंदर रमणीय स्थान हो गया है। अभी हम लोग वहाँ अंदर जाते हैं, बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, बहुत सुंदर रमणीय स्थान हो गया है। तो भक्तों के बिना धाम का जीर्णोद्धार नहीं होता है। तो एक चमत्कार हुआ, याद रखिए चमत्कार क्या हुआ, कई टनों की मूर्ति थी और उसको स्थापित करने के लिए कई IIT के इंजीनियर आए थे, 3 क्रेन लेके कंप्यूटराइज उनका पूरा काम था कि मूर्ति को उठाकर उसको खड़ा करना है। और ये गिरिराज जी उसके पीछे हैं और इनकी मूर्ति गिरिराज जी के इस तरफ लगानी थी और मुंह भी परिक्रमा की ओर करना था और पीछे गोपाल जी का मंदिर आता है ना, तो इन सबके प्लान के बाहर जाकर संकर्षण भगवान ने गोल पलटी मारी। हाँ, ऐसे समरसॉल्ट किया, कुछ क्षणों के लिए गोपाल जी का दर्शन किया मंदिर का और फिर पलटी मार के फिर खड़े हो गए। कंप्यूटराइज सब काम चल रहा है नियंत्रित रूप में, लेकिन सारे नियंत्रण को फेल करके संकर्षण भगवान ने गोपाल जी के मंदिर का दर्शन किया और फिर वापस घूम के जगह पर आ गए। तो ये लीला हमारे आंखों के सामने हुई है जब इनका स्थापना किया गया। तो संकर्षण भगवान को प्रणाम करते हैं, संकर्षण भगवान बलराम जी का अवतार है और पूरे पृथ्वी का भार धारण करते हैं, पूरा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का निर्माण में सहायता देते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं वैकुंठ लोकों का भौतिक जगत का। महाविष्णु भी उनके ही अवतार हैं और ये संकर्षण भगवान यहाँ पर गोवर्धन के पास भी विराजमान है। अभी यहाँ से दीर्घ परिक्रमा का रास्ता खुलता है। तो दीर्घ परिक्रमा क्या है, हम जो परिक्रमा करते हैं वो 22 किलोमीटर की होती है, 7 कोस के कह सकते हैं, लेकिन नहीं 7 कोस नहीं, वो छोटी वाली परिक्रमा है। 22 किलोमीटर की परिक्रमा की सनातन गोस्वामी महाराज जो परिक्रमा करते हैं 40 किलोमीटर की, वो परिक्रमा का रास्ता यहाँ से निकलता है। तो वो रास्ता जाता है पेठा गांव में, मैंने कहा था ना प्रविष्ट वन, जहाँ कृष्ण ने प्रवेश किया था भूमि के अंदर, उस गांव का नाम पेठा मतलब प्रविष्ट वन और उस गुफा का नाम प्रविष्ट गुफा, जिसमें प्रवेश किया था उन्होंने। तो वहां पर है चंद्र सरोवर, देखिए कितना सुंदर विशाल चंद्र सरोवर है। पहले तो प्रेम से दर्शन कीजिए, आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, स्नान कीजिए। कितना अद्भुत वृक्ष है देखो, पीलू का वृक्ष, कितना अद्भुत वृक्ष है। फिर उसके आगे अष्टकोणी मंदिर है, अष्टकोण के अष्ट अष्टकोने में वो अष्ट छाप की मूर्तियां हैं, सूरदास जी, गोविंद दास जी, सिद्ध स्वामी, परमानंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी पर, और क्या नाम, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, सबका एक एक विग्रह लगा कर रखा है। और ये सुंदर इतना विशाल कुंड है और उसमें रास मंडल है, यहाँ पर भगवान रास भी करते हैं, रास मंडल के चरण चिन्ह है भगवान के, उसको वंदन कर लीजिए। जो कृष्ण भगवान के, राधा रानी के, सखाओं के चरण और हस्त चिन्ह का दर्शन करते हैं गर्ग संहिता के अनुसार, उनको इस विश्व में, भौतिक दुनिया में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हरे कृष्णा, आप सबके भाग्य की जय हो। तो ये चंद्र सरोवर, इसके जितने चित्रपट निकाले उतने कम हैं, आपका समाधान ही नहीं होगा। तो अभी लीला आपको बताते हैं, सुंदर लीला है इसकी। एक एक दृष्टि को देखते हैं चंद्र सरोवर के और हम वर्णन करते हैं। भगवान ने शरद ऋतु में पूर्णिमा के दिन सबसे पहले रास किया था, सबसे प्रथम रास, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में बहुत रास किया, लेकिन वसंत ऋतु में जो पहला रास किया था वो यहाँ पर किया था। तो उस समय सरोवर नहीं था, ये तो केवल प्रविष्ट वन था। यहाँ पर जब रास किया तो गोपियों के और कृष्ण के शरीर से दिव्य स्वेद जल निकला। हमारे शरीर से पसीना निकलता है जो बदबू वाला होता है, जो नापसंद वाला होता है, उनको किसी को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या करें, शरीर ही ऐसा है। लेकिन भगवान और गोपियों के शरीर से दिव्य स्वेद जल निकलता है और वो स्वेद जल इतना देखने में प्रसन्नता होती है, चमकदार होता है, स्फटिक जैसा होता है, और उसके नदियां बहती हैं, और ये सब नदियों का वो जो स्वेद बिंदु इकट्ठा हो गए तो सरोवर बनने लगा। वो सरोवर इतना दैदीप्यमान था, इतना तेजस्वी था कि जब भगवान रास रचाते हैं तो देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, यक्ष सब लोग इकट्ठा होकर वहां पर वाद्य, गीत, संगीत बजाते, नृत्य करते हैं। आकाश में सब लोग नृत्य करने लगे। तो मैंने आपको दिखाया ना, ये जो एक बाजनी शिला है, देखो ये शिला बाजनी शिला है। केंद्र जी पृथ्वी पर आए और ये शिला लेकर उसको बजाने लगे ड्रम की तरह, इसलिए इसको कहा है बाजनी शिला। इसको कृष्ण ने भी आगे बजाया हुआ है, लेकिन इंद्र ने रास में म्यूजिक देने के लिए उसको बजाया, इसलिए इसका नाम बाजनी शिला है। ठीक है, तो फिर चंद्र जो है ना, वो इंद्र के अपने देवताओं की तरफ से अमृत को स्टॉक रखते हैं, अमृत का जो स्टॉक करने का जो अधिकार है वो इंद्र चंद्र को दिया है। तो चंद्र इतने इतने प्रभावित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने ये जगह कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें अमृत की बूंदे डाली। फिर भी रास चली रहा था, इतना रास हुआ कि विशाल कुंड निर्माण हुआ। आगे जाकर चंद्र इतने प्रभावित हो गए कि चंद्र देवता इसमें आकर पूरी तरह से पिघल गए, मतलब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया इस जल के अंदर, इसलिए उसका नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। और चंद्र सरोवर के अंदर सभी देवताओं ने, कहते हैं कि बहुत सारा सुर ताल मिलाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान का रास का सुर ताल और इनका सुर ताल अपनी अपनी जगह रहा। ये अपना बजाते रहे, वो अपना बजाते रहे, लेकिन कभी तालमेल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही उनकी कि भगवान के सुर ताल को हम मिलाया जाए, हम मिलाएंगे उसको, लेकिन सफल नहीं रहे। लेकिन देवता लोग हमेशा जब भी भगवान नृत्य करते हैं तो आके म्यूजिक देने का कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते उसके अंदर। तो फिर ये चंद्र सरोवर के आगे और लीला है, देखो आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ इस स्थान का दर्शन करते हैं, ये रास स्थली का दर्शन कीजिए, उसके बाद में चरण कमल का दर्शन कीजिए, उसके बाद में चंद्र सरोवर का दर्शन कीजिए, फिर बाजनी शिला, ये सूर शाम गौशाला के अंदर रखी हुई है बाजनी शिला, बहुत सुंदर शिला है, हमने कई बार दर्शन किया है। अभी 2019-2020 वाले कैंप में भी हम लोग ब्रजवासियों को लेकर यहाँ पर गए थे। यहाँ पर सूरदास जी ने 73 साल तक निवास किया। वो वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी, और दोनों में से एक थे गोकुलनाथ जी के ये प्रथम शिष्य हैं। गोकुलनाथ जी के चार शिष्य हैं और विट्ठलनाथ जी के चार शिष्य हैं, और वो मिलकर होते 8, तो उनको अष्ट छाप कहते हैं। ये 8 जो ना भगवान के परम सखा हैं, 8 लोग। कहते हैं कि भगवान की साक्ष्य लीला की जो प्यास थी वो कृष्ण के अवतार में पूरी नहीं हुई, इसलिए वो श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए दोबारा। मूर्ति के रूप में भी लीला किया और मूर्ति से बाहर प्रत्यक्ष आकर भी लीला किया, ऐसे उनका लीला था श्रीनाथ जी का। तो श्रीनाथ जी के साक्ष्य लीला में ये 8 लोग सहभागी हैं, जिनके अद्भुत चमत्कार है, सब लोग कवि हैं। उसमें सूरदास को सागर की पदवी दी गई, इसे सूर सागर कहते हैं। एक छोटा सा भजन गाएंगे सूरदास जी का। सूरदास जी का हमने जाकर मार्केट में एक बार इंक्वायरी किया था कि एक किताब ले ले उनसे, तो कह गए 6 खंड है बड़े बड़े, 6 खंड तो 2400 रुपए कीमत है, 6 खंड में उनके अभंग आते हुए। ठीक है भाई, हमको इतना तो समय नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन विनय पत्रिका नाम के सूरदास जी का बहुत ही जैसे रामायण महाभारत है ना, वैसे एक सूरदास जी का विनय पत्रिका नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। उस पर अभी अभी चंद्र सरोवर में 60 दिन की कथा हुई है विनय पत्रिका के ऊपर। इतना गहरा विषय इसमें सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है। और सूरदास जी का जो भजन मालिका है इतनी फेमस है, जो भी लीला हम बोलते हैं ना, अभी मान मंदिर की लीला है या और कोई लीला है, बहुत सारी गहरी गहरी लीलाओं का वर्णन साक्षात दर्शन करके उन्होंने किया है। वैसे तो अंधे थे वो, लेकिन भगवान का हृदय चक्षु से साक्षात्कार करते थे और जो उनको दिखता था वो उसके भजन लिखे उन्होंने। तो ये उनकी समाधि है, यहाँ पर निवास भी किया उन्होंने, अपने सारे भजन यहाँ पर बैठ के लिखे, बहुत पवित्र स्थली है। तो अब हो पीछो लियो तिहारो कामी कुटिला कृपण अपराधी, कामी कुटिला कृपण अपराधी, अगनी भयो बहु भार्यो प्रभु जी ले चरणन में डारो प्रभु जी। अब हो पीछो लियो तिहारो, उसका संक्षिप्त में अर्थ ऐसा है कि सूरदास जी कह रहे हैं भगवान अभी हमने अपना आपका पीछा कर लिया, अब हूँ यानी मैं पीछो लियो तिहारो, और कैसा हूँ मैं, कामी कुटिल कृपण अपराधी, इतना वर्णन कर रहे हैं। अघानी भयो बहु भारियो, अग यानी पाप का भार इतना हो गया है कि मुझे भी सहन नहीं हो रहा है वो, ले चरणन में डालो प्रभु जी, आपके चरण में डाल दो मुझे, विनती कर रहे हैं प्रभु जी ले चरणन में डालो, अब हूँ पीछो लिया तिहारो, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब मैं आपके पीछे लग गया हूँ, बस आप मुझे सहारा दो और बचा लो। ऐसे सुंदर सुंदर भजन विशेष करके मान मंदिर की मान लीला भी उन्होंने गाई है। अंधे थे लेकिन वो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करते थे, जहां जहां मंदिर जाते थे उनकी ख्याति थी, वो ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करते थे। राधा कुंड में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर इनको ले गए थे एक बार, बोले महाराज जी बताओ दर्शन क्या है, पर्दा नहीं खोलेंगे आपके लिए, तो पर्दा बंद था, ये भी अंधे हैं, पूरा श्रृंगार का वर्णन किया। और फिर आगे वर्णन करते 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 गाली पे उतर आए, हाँ नंद बाबा को गाली देने लगे, बोले बस 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 पर्दा खोलते हैं आपके लिए, पर्दा खोल दिया। बहुत सुंदर लीला है, मतलब प्रेम से वो होता है, मैं आपको बताया ना नोक झोंक में ताने मारते हैं, वैसे ये शुरू हो गए। तो जब नंद बाबा के चरित्र के ऊपर आ गए तो तुरंत बोला बस 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 पर्दा खोल देते हैं, पर्दा खोल दिया और अपने अंतर चक्षु से दर्शन किया उन्होंने। तो जगन्नाथ जी का मंदिर अभी भी राधा कुंड में है। तो सूरदास जी को प्रणाम करते हैं, सूर सागर जी महाराज को, बड़े अनोखे भक्त थे ये और बड़ी प्रत्यक्ष लीला है इनकी भगवान के साथ में, ऐसा है। यहाँ से हम लोग आगे मुड़ते हैं तो पेठा गांव में जाते हैं प्रविष्ट वन में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब भी चंद्र सरोवर पे लीला हो रही थी तो गोपियों को घमंड हुआ कि देखो सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण भगवान के केवल मेरे ही साथ में लीला कर रहे हैं, है ना, इतने मग्न होकर डांस कर रहे थे कि सबको लग रहा था कि सबको छोड़कर मेरे ही साथ में नाच कर रहे हैं। तो कृष्ण को तो ऐसा लगता, अच्छा लगता नहीं, अहंकार वगैरह, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए, जैसे वो शरद पूर्णिमा के रास्ते में भी अंतर्धान हो गए थे, तो बाद में वो इंद्रतला में जाके बैठे थे और वहां पर पीले हो गए थे भगवान, वैसे यहाँ से भी अंतर्धान हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर जाकर इस स्थान पे आए जहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं क्षीर सागर कुंड, यहाँ पर आके चतुर्भुज नारायण बने, अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, और खड़े हो गए बीच में, खड़े हो गए ना, क्षीर सागर प्रकट हो गया, उनके चरणों के नीचे कमल प्रकट हो गया, जैसे व्यवस्था होती है वहां पर। तो चार भुजा वाले कृष्ण खड़े हैं, देखो उसके चित्र पर दिखा था आपको, देखो यहाँ पर गोपियां ऐसे रोते रोते आते हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, पूछ रहे उनको। तो रास्ता में विष्णु मिले, तो अगर आप लोगों को विष्णु मिले आप फिर क्या करेंगे? अरे भगवान विष्णु दंडवत प्रणाम, सबने दंडवत प्रणाम किया। क्या पूछा उनको? आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है क्या? इतना ही पूछा उनको। तो गोपियों के भाव विवल प्रेम से कृष्ण व्याकुल हो रहे थे, लेकिन वो कैसे भी करके चार भुजाओं को बनाए रखने में समर्थ रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे कि भाई चार भुजाएं गिर ना जाए हमारी, जो सॉन्ग बना के रखा है, विष्णु बन के खड़े ऐश्वर्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो गोपियां तो एक चार हाथ में से एक हाथ दिखाए कि इधर चले गए, तो गोपियां उधर चली गई। सब राधा रानी पीछे से आ रही थी, राधा रानी ना एक भवरे से बात कर रही थी, और भवरे को कृष्ण समझकर उसको कठोर वचन उच्चारण कर रही थी, मतलब गाली दे रही थी। तो वो भाव में कृष्ण समझकर भवरे से बात कर रही है, उतने में विष्णु दिखाई पड़ते हैं। तो जिस प्रकार से वो विष्णु को पूछती है कि आपने हमारे कृष्ण को कोई देखा है क्या, तो ऐसे भाव को देखकर कृष्ण अपनी दो भुजाओं को संभाल नहीं पाए, एक्स्ट्रा भुजाओं को, वो दो भुजाएं पिघल गई और वो दो भुजा वाले कृष्ण बन गए। देखो राधा रानी के प्रेम के सामने कृष्ण का कोई सॉन्ग टिकता नहीं। उन्होंने ब्रज में माधुर्य भूमि में ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन राधा रानी के माधुर्य प्रेम के प्रेम तम स्थिति में वो उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया और उनको दो भुजा वाले कृष्ण बनना पड़ा। तो ये वो कुंड है जहाँ पर दूध सागर प्रकट हुआ था, तो ये जो मंदिर है वहां पर वो कमल था, वहां पर नारायण की मूर्ति आज भी विराजमान है। देखो आप ये अलग अलग जगह से बहुत विशाल कुंड है, ये बहुत ही विशाल हा? और ये विशाल कुंड में उधर जो कमल था जिस जगह पर जहां पर भगवान की मूर्ति है उसका फोटो निकालना अलाउड नहीं है, तो ये अलग अलग एंगल से उस कुंड का फोटोग्राफ निकाला हुआ है और ये चित्रपट है। और ये वो पेड़ है जो कृष्ण ने ऐंठ दिया था, ऐंठ मतलब ट्विस्ट किया था ना, ऐंठा कदम्ब कहते हैं उसको। गिरिराज को उठाने के पहले ग्वाल बालों को वो तसल्ली देने के लिए उन्होंने वो कदम का पेड़ उठाया था, उसको ना ट्विस्ट कर दिया था, वो ये पेड़ है। अभी भी वो कांच के बंद वार्निश करके रखा है उसको, देखिए जाकर आपको देखना चाहिए यकीन करने के लिए कि आज भी उसका निशान है कि भगवान ने पेड़ को कपड़े की तरह निचोड़ दिया था। तो ऐसा ये सुंदर प्रविष्ट वन है, बहुत सुंदर, सनातन जी गोस्वामी महाराज यहाँ से परिक्रमा करते थे। और बहुत साल पहले जब हम वहाँ पर गए थे तो नारायण भगवान के जो विग्रह हैं, जहाँ पर भगवान नारायण बनकर खड़े थे, चतुर्भुज नारायण, और जहाँ उनके पैर के पीछे कमल था और चारों ओर क्षीर सागर कुंड बना था, उधर उसके बाजू में ही इस गुफा का मुख था, लेकिन आज वो मुख बंद कर दिया है। हमने उस गुफा का दर्शन किया है, वो गुफा से आगे बहुत दूर तक गोवर्धन पर्वत है, लेकिन तभी तो गोवर्धन पर्वत वहीं था, अभी वो साफ था ना पुरुषमणि का, तब से वो ढस रहे ना, वो तो नीचे गए तो गोवर्धन पर्वत दूर चले गए। अभी उस कृष्ण के समय वहां पर थे, वो गुफा भी वहीं पर थी, गुफा में गए उठा लिया उन्होंने। आज आप देखेंगे तो गुफा एक जगह पर है और कई किलोमीटर दूर आगे पर्वत चला गया, मतलब वो ढस के जमीन के नीचे चला गया। लेकिन गुफा जो है ना, प्रविष्ट गुफा वहीं पर थी। अभी मुझे कहानी याद आ रही है, इस प्रविष्ट गुफा के पास में एक बार कुंभन दास जी बैठे हुए थे और अपने ध्यान में लीला का दर्शन कर रहे थे। क्या दर्शन कर रहे थे? अब इसकी कई वर्षन है, अलग अलग वर्षन थे, मैं आपको बताता हूँ। तो वो कुंभन दास जी को भगवान प्रत्यक्ष आकर श्रीनाथ जी जगाते थे, लीला करते थे। तो एक बार रात को उनके घर पे आए कुंभन दास, उम्र में बड़े थे, बहुत बूढ़े थे, और कृष्ण बालक थे और सखा भाव था उनका। तो वो कुंभन दास जी के पास आए और जगाया उनको, ए कुंभना उठो उठो, तो क्या हो गया? चलो माखन चुराने चलते हैं। अरे कोई समय माखन चुराने का है? नहीं, वो एक जतिपुरा में एक गोपी है, वो बड़ी बूढ़ी गोपी है, बड़ी सरल हृदय है, रोज मंथन करने के समय प्रार्थना करती है कि कन्हैया मेरे घर में आके मेरा माखन खा ले। तो आज मेरी उसकी इच्छा है कि उसके घर में जाकर उसकी इच्छा पूरी करें। तो बोलते हैं, अरे मैं तो बुढ़ा हूँ और वो हमेशा तो मैं पिट जाता हूँ और तुम भाग जाते हो, तो मेरा कैसा होगा? कोई नहीं, मैं कुछ नहीं, आपको संभाल के रखूंगा, चिंता मत करना, चलो मेरे साथ, हम जाकर वो बुढ़िया का मखान खाते हैं। बीच रात में जतिपुरा ले गए कुंभना को, और वो ना छत पे चढ़े, पेड़ पे चढ़े, छत पे चढ़े, कोल निकाले छत के और वहां से अंदर कूदे, और वहां मटका मिला उनको, और वो मटके में लटक रहे हैं। कैसे लटक रहे हैं? एक हाथ से लटक रहे हैं, एक हाथ से माखन खा रहे हैं, और कुमना को वहां बिठा के रखा है अंधेरे कमरे में, और कुमना देख रहे हैं उसको, अरे एक हाथ से लटक रहा है, एक हाथ से माखन खा रहा है, वाह क्या दृश्य है। उतने में क्या होता है ना, उसकी धोती कृष्ण की पीछे से छूटने लगती है, लेकिन कृष्ण माखन खाने में इतने मशगूल है ना, तो विचार कर रहे हैं कि अभी अगर मैं इसमें व्यवधान करूंगा तो माखन खाने में डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो क्या करें, माखन भी खाना है, धोती को भी छोड़ना नहीं है, तो क्या करते हैं कृष्ण बताओ? दोनों काम करना है, धोती को भी ठीक करना है जो छूट रही है पीछे से, माखन खाना भी कंटिन्यू रखना है। तो कुंभना दर्शन कर रहे हैं, उनके आंखों के सामने कृष्ण के पीठ से दो हाथ निकलते हैं, पीछे जाते हैं, छूटती हुई धोती को वापस जगह पर रखते हैं, वापस अदृश्य हो जाते हैं, और माखन खाना वहां कंटिन्यू रहता है। तो मतलब कुंभना ने चतुर्भुज कृष्ण का दर्शन किया, ये भी एक रहस्य की बात है। चतुर्भुज दर्शन वहां पर भी दिया कृष्ण ने नारायण के रूप में, और इस तरह से भी दिया। उसके बाद में कुंभना को पुत्र हुआ है, उसका नाम इस चिंतन के अनुसार उसने चतुर्भुज दास रखा, और वो भी अष्ट सखा में से एक सखा बना नरसिंहनाथ जी का। तो फिर उसके बाद में वो बुढ़िया उठी, और बुढ़िया उठकर दीपक जलाया और देखा, अरे चोर चोर के कुछ कन्हैया तो ऊपर छत के भाग गए और बुढ़ा तो अंदर रह गया। बुढ़ा को बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, और वो चिल्ला रहे, अरे कन्हैया मैंने कहा था तुम तो भाग जाते हो, मैं पिट जाता हूँ तो ताली बजा कर उसको, हंस रहे भगवान इस तरह से लीला करते थे। ये जो वो है ना चतुर्भुज दास, आगे जाकर बहुत बड़ा भक्त बना हुआ, लेकिन जब बालक था ना बहुत प्रेम था श्रीनाथ जी से उसका। श्रीनाथ जी ना मूर्ति से बाहर आकर लीला करते थे उसके साथ, और ये बालक था, बहुत अनजान सा बालक था, अभी कुमना का बेटा था इसलिए सबको पहचान थी उसकी। तो एक बार श्रीनाथ जी बाहर आ गए मंदिर से, तो मंदिर कहाँ है उसका? उधर है, गोपाल जी का मंदिर है ना जतिपुरा में। तो वहां से आए बाहर खेलने के लिए, और चल कुंभना खेलते हैं, मंदिर के प्रांगण में खेल रहे हैं। बोले आज मुझे घोड़ा बनने का इच्छा है, आप तो घोड़ा बनो, मुझे सवारी करने की इच्छा है। कुंभना का बालक जो है वो घोड़ा बन गया। अभी कैसा है, चतुर्भुज दास को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं लेकिन बाकी किसी को दर्शन नहीं हो रहे हैं, और ये घोड़ा बनकर घूम रहा है, तो लोग क्या समझते हैं, कुंभना का बालक पागल है, हमेशा ऐसे कुछ करते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि इसको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात श्रीनाथ जी महाराज उस पर आरूढ़ हो रहे हैं और ये घुड़सवारी कर रहा है उनके लिए। तो ये घोड़ा बनकर पूरा मंदिर के प्रांगण में घूम रहा है, और श्रीनाथ जी बैठ के हैट हैट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं बहुत, और ये भी कुछ बात कर रहा है, श्रीनाथ जी कुछ बात कर रहे हैं, जवाब दे रहा है, और लोगों को कल इसकी बातें सुनाई पड़ रही है। तो लड़का तो पूरा पागल हो गया है कुंभना का, क्या कहे, बालक तो होता है, बालक को क्या बोलेंगे। उतने में बहुत देर घुमाने के बाद में ना चतुर्भुज दास का ब्लैडर फुल हो जाता है, उसको लघु शंका आने का शुरू होता है। कहता है, अरे ठाकुर जी महाराज मुझे तो लघु शंका जाना है। तो बोले, घोड़ा बने हो तो घोड़े की तरह करो। घोड़ा कैसे करता है, कंटिन्यू चलते रहता है, अपना काम करते रहता है, तो घोड़े की तरह करो। तभी क्या हो गया, वेग आ गया, तो वो कुछ रोकने को, वो तो उतरने को तैयार नहीं है, और ये उसको वेग कंट्रोल करने को जमता नहीं है, तो छोड़ना शुरू कर दिया मूत्र उसने, पूरे मंदिर में घोड़ा बन के घूम रहा है, मूत्र मूत्र छोड़ रहे हैं। तो अभी तो पुजारी बहुत परेशान हो गए, बोले ये तो हद हो गई, अभी इतना सारा शरारती करते थे हम लोग, मान लेते ठीक है शरारत बच्चा है कर सकता है, लेकिन ये शरारत जो है ना बहुत हद हो गया, अभी हम लोग को टॉयलेट नहीं कर सकते। तो उसको ना बहुत पीटा उन्होंने, श्रीनाथ जी उतर गए उसमें से और ताली बजा कर हंस रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और वो बोल रहे हैं तुम तो हमेशा हमको पिटवाते हो। तो फिर वो बहुत पुजारी गुस्सा हो गए, बोले कुंभना के बालक को बंद करो, मंदिर से बंद करो उसको। रात को विठलनाथ जी और ये गोकुलनाथ जी और कोई दोनों में से एक ना, वो पुजारी सेवा शयन सेवा कर रहे हैं भगवान की, शयन की सेवा करते समय उनसे श्रीनाथ जी महाराज बोले कि तुमने मेरे भक्तों को मंदिर से बरी कर दिया, तुम जानते हो कौन है वो, मेरा प्रिय भक्त है वो, उसको आप बंद नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो कुंभना के घर गए थे कंप्लेंट करने के लिए कि तुम्हारे बालक ने आज हद कर दी, आज से बंद मंदिर आना उसका। तो कुमुना को बड़ा दुख हुआ, चतुर्भुज को दुख हुआ था, तो रात को भगवान ने स्वयं बात की, तब से दोबारा उनको लिया गया। ऐसे कुमुना थे और ऐसे चतुर्भुज दास थे। एनीवे तो याद क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रेरणा हुई थी और वहाँ पर ले गए थे श्रीनाथ जी महाराज उनको। तो आइए श्री सागर का दर्शन करेंगे, उसके आगे हम लोग अभी एक अद्भुत स्थान पे जाएंगे, इसका नाम है गुलाल कुंड। देखिए ये थोड़ा सा ऑफ द वे है, गोवर्धन के बाहर है, ये भी परिक्रमा में लंबी परिक्रमा में आता है, लेकिन थोड़ा अलग अलग जगह पर है, डीग के रास्ते पर है। डीग मतलब क्या, दीर्घपुर। दीर्घपुर का मतलब क्या है, प्रभु रामचंद्र के समय पर भरत जी का राज्य था दीर्घपुर, आज उसका नाम डीग है। डीग जैसे वो मथुरा में राज्य किसका था, शत्रुघ्न महाराज का, भरत जी का राज्य यहाँ पर था। तो डीग रास्ते पर ये गांठोली गांव आता है, और गांठोली गांव में गुलाल कुंड है। ठीक है, तो गुलाल कुंड की दिखा तुम दर्शन कर लो पहले। देखो इतना सुंदर कुंड है, बहुत विशाल। यहाँ पर दो अद्भुत पेड़ है, मैं आपको कथा बताता हूँ उसकी, देखो। ठीक है चलो, देखो ये कुंड जो है ना, कथा ऐसी है कि इन पेड़ों के पास एक दिन राधा और कृष्ण, जैसे ये पेड़ है ना, यहाँ पर एक सफेद रंग का पेड़ है, वो कदम का पेड़ है, वो राधा रानी का स्वरूप है। और जो काले रंग का पेड़ है ना, देखिए आपको दिखाता हूँ, जो काले रंग का पेड़ जो है वो कमाल का पेड़ है, वो कृष्ण का स्वरूप है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण एक दिन एकांत में बैठे थे, अपनी ही लीला में मग्न थे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई आया गया, कुछ उनको ध्यान नहीं था उसका। सब गोपियां आ गई और चारों ओर से घिर गई उनको, और उन्होंने पीछे जाकर राधा और कृष्ण के जो वस्त्र थे, वसनांचल, उनकी गांठ मार दी और छोड़ चले गए, वो मतलब बैठ गए वहां पर। कुछ देर बाद जब भाई चेतना में आए राधा और कृष्ण, और वो उठे, तब उनको ध्यान में आया कि हमारे कपड़े को गांठ मार दिया है। तो बहुत शर्माए वो, और जैसे ही वो शर्माए, उनको ध्यान में आया कि हमारे वस्त्रों को गांठ मार दिया है, तो सब गोपियां प्रकट हो गई वहां पर, और उन्होंने क्या किया, रंग उठाए और उनको पूरा रंग से भिजा दिया, पूरा होली खेला उनके साथ। तो वो जो होली का रंगों का वर्षाव किया गोपियों ने राधा और कृष्ण के ऊपर, उससे ये विशाल कुंड बना जिसका नाम है गुलाल कुंड। तो गुलाल के रंग की पिचकारियां उन पर चढ़ाई गई, इतना उन पर रंग डाला गया, वर्षाव किया गया, कि इससे वो ये गुलाल कुंड बना। बहुत सुंदर कुंड है ये, और उसके क्या कहते हैं, स्मृति में ये अद्भुत वृक्ष वहां बने हुए, किसी ने बनाया नहीं इसको। हाँ आज तक हमने अभी 35 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही है ये पेड़, उसकी गांठ भी ऐसे ही बनी हुई है, देखो कैसे बनी हुई है, ये बहुत अद्भुत दृश्य है। और ये ऐसी एक ही जगह है जहाँ पर 12 महीने होली खेलती है, होली की जगह यहाँ पर 12 महीने चलती है। जब भी आप जाओ आपको रंग लगाएंगे, देखो पेड़ को भी रंग लगा करते हैं। हाँ सब जगह जाएंगे, घूमेंगे ना, यहाँ वहाँ सब जगह गुलाल रंग मिलेगा, देखो पेड़ में सब जगह गुलाब मिलेगा आपको। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, इसकी कथा समाप्त करने के बाद। तो यहाँ की कथा ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु 1515 में शायद वृंदावन में आए थे 2 महीने के लिए। तो जब गोवर्धन में आए ना, मैंने कहा ना गोवर्धन में आए, मानसी गंगा में स्नान किया, परिक्रमा दिया, राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, उस समय उनको गोपाल जी के विषय में पता चला कि माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए थे, उन्होंने गोपाल जी को प्रकट किया था, लेकिन वो तो पर्वत के ऊपर है, मैं तो भक्त हूँ, पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं सकता मैं, तो क्या करें, दर्शन तो करना है। तो गोपाल जी को लगा कि अरे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं, तो मुझे जरूर उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो गोपाल जी महाराज ने क्या किया, अफवाह फैला दी गांव में पूरी कि मुसलमान लोग आ रहे हैं, मुसलमान लोग आ रहे हैं। तो पुजारी लोगों ने क्या किया, पुजारी लोगों ने गोपाल जी का विग्रह उठाया पर्वत के ऊपर से और भाग के इधर आ गए गांठोली गांव में, ये पेड़ है ना यहाँ पर, इसी जगह पे आ गए, वहां पर भी वल्लभाचार्य की बैठक है, वहां पर आके उन्होंने विग्रह को रखा छुपा कर। तो महाप्रभु को पता चला कि अरे गोपाल जी महाराज तो पर्वत से नीचे आ गए हैं गांठोली गांव में, तो महाप्रभु जी गांठोली गांव में आए, और महाप्रभु जी ने यहाँ पर 7 दिन धुआंधार कीर्तन किया, गोपाल जी का दर्शन किया प्रेम से, सब ब्रजवासियों को लेकर 7 दिन तक महोत्सव चलता रहा। 7 दिन के बाद में पता चला कि ये तो अफवाह थी। हा? तो वापस फिर उनको वापस रखने का प्लानिंग किया गया। तो वो जो जुलूस था ना, जो गोपाल जी को लेकर जुलूस से लेकर जा रहे हैं, उस जुलूस का नेतृत्व हमारे चैतन्य महाप्रभु ने किया। परिणाम संकीर्तन करते हुए गोवर्धन के तले तक, तलेटी तक लेके गए उनको। फिर वहां पर विद्वासी लोग उनको ऊपर लेके गए और वापस मंदिर में विराजमान किया। ऐसे ही एक बार दोबारा गोपाल जी ने अफवाह फैला दी, तो उस समय उनको भगा कर ले गया मथुरा में। और मथुरा ले गए तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सभी गोस्वामी वहां पहुंचे और 1 महीने तक मथुरा में उन्होंने गोपाल जी का सेवा किया। फिर पता चला कि अफवाह थी, तो वापस मथुरा से ये वापस आ गए। लेकिन वास्तव में जब औरंगजेब आ गए वास्तव में, तब इनकी मूर्ति को लेकर नाथ द्वार में वहां पर स्थापन किया गया। और नाथ द्वार में भी औरंगजेब गए थे सेना लेकर। लेकिन नाथ द्वार में जब पहुंचे ना, तो करोड़ों मधुमक्खियों ने उनके सैनिकों को काटा, सैनिक आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो औरंगजेब भी इतनी मधुमक्खियां काटी, तो औरंगजेब को समझ में आया अरे साक्षात अल्लाह है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। मधुमक्खी आएगा तो तलवार क्या करेगा, आपका बॉम्ब क्या करेगा, तो बोला क्या करेगा, मधुमक्खियों को कुछ नहीं कर सकता है। तो सारे सैनिकों को परेशान कर दिया। चलो तभी औरंगजेब ने सैनिकों को रोक दिया, बोले यहाँ पर नहीं जाना है आपको, खुद गए बिना शस्त्र के और अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी की सीढ़ियां साफ की। उन्होंने अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी की सीढ़ियां साफ की और अपने पास का एक कीमती हीरा श्रीनाथ जी को भेंट में दिया, आदाब किया और चले गए वहां से। आज भी श्रीनाथ जी महाराज वो हीरा पहनते हैं यहाँ पर चमकदार, देखो उनकी मूर्ति को बराबर से। ये जो हीरा यहाँ पर लगा है ना, वो श्रीनाथ जी महाराज औरंगजेब का दिया हुआ पहनते हैं, ऐसा इतिहास है उनका, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा गांठोली गांव है। तो मैम आपको भी गांठोली गांव का ये जो वीडियो है वो दिखाते हैं, एक मिनट देखिए।